आइए हम कुछ क्षण के लिए खड़े रहें, जबकि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं। अनुग्रहकारी और पवित्र पिता परमेश्वर, हम बहुत ही आनंदित हैं कि आप एक परमेश्वर हैं और परेशानी के समय आप एक उपस्थित सहायता हैं। आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए हम आपके धन्यवादित हैं। हम इसे अपने हृदय से व्यक्त नहीं कर सकते कि हम इसकी कैसे सराहना करें और कैसे आप हमारे बचाव के लिए आते हैं जब हम संकट में होते हैं। हमने वर्षों में होते हुए सीखा है कि आप पर भरोसा करें और आपका विश्वास करें। प्रभु, मैं इस दोपहर को प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी आशीषें लोगों पर उठे लेंगे। जब ये सभा समाप्त हो तो होने पाए हमारे मध्य में एक व्यक्ति भी दुर्बल ना हो। यदि यहाँ कोई ऐसा होगा जो परमेश्वर के साथ सही नहीं है, होने पाए वो सामर्थ जिसने यीशु को कब्र से उठाकर खड़ा किया, उनकी मरणहार देह को जिलाए प्रभु और उनके प्राण को और उन्हें आपकी ओर फेर दे प्रभु। इसे प्रदान करें वे जो बिना पवित्र आत्मा के हैं, होने पाए यह उनके लिए एक महान दिन हो जिसे वे कभी न भूल पाएंगे, क्योंकि होने पाए यह वो दिन हो कि परमेश्वर अपनी आत्मा को उन पर उढ़ेल दे। प्रभु इसे प्रदान करें, हमारे पापों को क्षमा करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप भाई सुलीवन को आशीषित करेंगे, हमारा कृपालु और मूल्यवान मित्र, और लोगों के प्रति उसके विचार और उनके लिए हर संभव संभावना को लाने का यत्न करता है कि वो कर सकता है ताकि उनकी सहायता कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भाई सुलीवन को आशीषित करेंगे, सारे देश भर में सेवकों को आशीषित करें, हर स्थान में उन्हें बहुत अधिक बहुतायत से देना प्रभु। होने पाए वे पुलपिट में हिम्मत से खड़े हों और परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, क्योंकि हम इस संसार के इतिहास के अंत के समय में जी रहे हैं। इन समयों में आपकी भलाई हम पर बनी रहे, क्योंकि हम यह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। मैं आप लोगों का आभारी हूँ जैसे परमेश्वर का, इसके लिए भाई सुलीवन ने इसे स्वयं अपने ऊपर लिया है। आप देखिए, भाई सुलीवन के लिए ऐसा करना ठीक नहीं होता, इसलिए हम इसके लिए तैयार थे। इस दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और अब उस प्रेम भेंट के लिए, यह आपको यह नहीं लेना था, नहीं यह आवश्यक नहीं था। देखिए बस, वे खर्चों का भुगतान करते हैं, होटल और खाना जो हमने खर्च किया था, और यही सब आवश्यक था। लेकिन आपका धन्यवाद बहुत ही दयालुता से, और यह पैसा मिशनरियों की सहायता के लिए जाएगा और लोगों को परमेश्वर के पास लाएगा। इसके साथ कोई सिगरेट नहीं खरीदी जाएगी, कोई भी विस्की, कुछ भी नहीं जो गलत है, यह सही चीज के लिए उपयोग होगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इसे वहाँ आपके खाते में डालेगा और इसे 10,000 गुना से गुना करेगा। हर एक डॉलर या पाई या पैसे को जो आपने इस सेवा के लिए दिया है। और अब मैं संयुक्त राज्य की सेना को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें यह भवन बैठने के लिए दिया ताकि इन सभाओं को कर सकें। निश्चय ही मैं उनका पूर्ण हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि मैं समझता हूँ, भाई सुलीवन ने कहा है कि हर एक चीज का भुगतान कर दिया जाएगा। हमने अभी तक किसी भी शहर से कभी एक पैसा भी कर्जा छोड़कर नहीं निकले हैं, बल्कि हर एक चीज का पूरा भुगतान किया गया है। हम बस और किसी चीज पर विश्वास नहीं करते। आपको किसी का कर्जदार नहीं होना चाहिए, आपको सीधा और सच्चा होना चाहिए। और यदि आपके ऊपर किसी का कर्जा है, जाकर उससे कहें और बताएं कि आप उसके कर्जदार हैं, बस जरा सा समय दें और आप इसका भुगतान कर देंगे। समझे, हमेशा ही यही एक बेहतर यह मसीहत की एक सही निशानी है, ईमानदार होना, साफ रहना। आप वैसे ही जीना चाहते हैं, ठीक जैसे आप बात करते हैं। यदि आप स्वयं इसे नहीं जीते तो आप किसी और से क्या आशा करते हैं कि वो इसे जिए। आप समझे, आप लिखित पत्रियां हैं जिसे सब मनुष्यों के द्वारा पढ़ा जाता है। इसलिए हमेशा ईमानदार, न्यायपूर्व और सच्चे बने रहें। सच्चाई को बोलें, कोई मतलब नहीं किसी को इससे कितनी तकलीफ होती है। जो भी हो, सच्चाई को बोलें, क्योंकि हर बार आप उसको वैसा ही बता सकते हैं। और यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपको लाखों मील का चक्कर लगाना पड़ेगा और फिर से आपको उसी झूठ पर आना पड़ेगा, और आप बस इसे एक भयानक चीज बना देंगे। बस ईमानदार बने रहें और आप इसे हमेशा एक ही प्रकार से बता सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है। बाइबल के साथ भी ऐसा ही है, इसे वैसे ही बताएं जैसा बाइबल कहती है। इसके साथ कोई समझौता न करें, वैसा ही कहें जैसा है, ये ठीक यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप अपनी उंगली उस पर रख सकते हैं। ये इसी प्रकार से आप शैतान को हराते हैं। शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हम तुझे एक अद्भुत कार्य करते देखें। वे कहते हैं कि तू एक अद्भुत कार्य करने वाला है, इन पत्थरों को रोटी में बदल दे और आओ हम देखें, तू भूखा है। उसने कहा, लेकिन ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। समझे, उसने पिता का वचन लेकर और शैतान को हरा दिया, ठीक उसी के अपने ही आधार पर। इसलिए आप भी वही चीज कर सकते हैं, शैतान को प्रभु के वचन से उसी के आधार पर हराएं। फिर मैं हमेशा भाई सुलिवन का आभारी रहूंगा। इस अभिव्यक्ति के लिए क्षमा करें। मैं सोचता हूँ जब उन्होंने भाई सुलिवन को बनाया कि उसने बस नमूने को फेंक दिया, उसके जैसा कोई नहीं है। वहाँ केवल एक ही व्यक्ति है जिससे मैं कभी अपने जीवन में मिला हूँ, जिसने मुझे भाई सुलिवन की याद दिलाई। वो भाई ई हावर्ड कैडल थे। मैं नहीं जानता वो उसे जानता है या नहीं। उससे वो भाई कैडल भाई सुलिवन के जैसा ही एक अच्छा पुराना ग्रामीण लड़का था, और वो अपने हाथों को अपनी जेबों के अंदर तक डाल देता, इतना तक कि उसका कमर में का पट्टा नीचे चला जाता था, और अपने मुंह को एक ओर करके बात करता, और वह बस एक ही ई हावर्ड कैडल था। और इसी प्रकार से मैं भाई सुलिवन को मित्र के रूप में पाकर खुश हूँ, और सुसमाचार में एक भाई, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उसे आशीषित करेगा, और वहाँ उसकी छोटी कलीसिया को, उसकी मूल्यवान पत्नी और उसके प्रियजनों को, और आप लोग दूसरे सेवक जो यहाँ पर हैं, आपको और आपके सभा के लोग, पूर्ण सुसमाचार के प्रचारक, वचन की कुछ तकनीकी चीजों पर हम शायद एक दूसरे से सहमत ना हों। बहुत सी चीजों में मैं अपनी पत्नी से सहमत नहीं होता हूँ, और आप जानते हैं ये किस बात पर होता है। वह सेब के पकवान को पसंद करती है और मैं चेरी का पकवान पसंद करता हूँ, सो हम असहमत होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ मैं स्वयं क्या करता हूँ। मैं अच्छा गरम चेरी का पकवान पसंद करता हूँ। मैं इसे ठीक तभी तैयार करता हूँ और उसके ऊपर मक्खन डालता हूँ और फिर उसके ऊपर गुड़ डालता हूँ। और भाई, आपके पास कुछ तो खाने के योग्य होता है। मेरी पत्नी इसे खाने से डरती है। मैं सोचता हूँ कि वो उसकी कैलोरी से डरती है। वो इसे पसंद कर सकती है, लेकिन आप जानते हैं महिलाएं कैसी होती हैं। वे डरती हैं, वे इतनी पतली हो जाती हैं कि आप उन्हें एक पिन से चिपका दें और हड्डी तक काट सकते हैं, और फिर भी, और वे पतला होना चाहती हैं। उनका ऐसा ही स्वभाव होता है, मैं समझता हूँ, इसलिए वे, और लेकिन मैं इसे पसंद करता हूँ। अब हम इस पर असहमत होते हैं। दूसरी चीजों में हम ठीक हैं, लेकिन आप देखते हैं हम पूरी तरह से सहमति में नहीं हैं। इसलिए हम उसी चीज को देखेंगे भाइयों, लेकिन मुख्य बात यह है हम पकवान को खा रहे हैं, यही मुख्य बात है। मुख्य रूप से पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर और मसीह के आगमन पर और महान सुसमाचारक बाइबल के मूल सिद्धांत में हम निश्चित रूप से उसके साथ हाथ में हाथ डाले खड़े हैं। एक बड़े एकजुट भाइयों के समान, बिना संप्रदाय की बाधा के, बिना किसी चीज के जो हमें रोके, हम कलवरी की ओर एक महान सेना के समान एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। यदि मैं कभी आपकी सहायता कर सकता हूँ तो उसे करने में मुझे आनंद मिलेगा, और मुझे यकीन है कि आप भी मुझसे उसी बात को कहेंगे और आप मेरी सहायता कर सकते हैं। और आप एक चीज कर सकते हैं जो मैं जानता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे कभी भी गलत नहीं जाने देगा। मैं मेरे हृदय में गलत जाने की इच्छा नहीं है। मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं वही करना चाहता हूँ जो सही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसा भाई जैक मूर ने मुझे एक बार बताया था, उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं आपके सारे अनुभवों के लिए आपके स्थान पर खड़ा नहीं रहूंगा न्याय के दिन पर, क्योंकि परमेश्वर आपसे एक बड़े उत्तर की मांग करने जा रहा है। कहा, क्योंकि उसने आपके हाथों में लाखों लोगों को दिया है। अब यदि मुझे पता है कि मुझे वहाँ खड़ा होना है और उन लोगों के लिए उत्तर देना है, तो फिर मेरे पास प्रचार करने के लिए किस प्रकार का सुसमाचार है, किस प्रकार की ईमानदारी, जबकि उसके लहू के खरीदे हुए मेरे हाथों में है। और जैसा कि उसने मुझे एक दान दिया है कि बिना किसी संदेह के कोई भी समझदार व्यक्ति जान जाएगा कि यह तो परमेश्वर की ओर से आया है, और इसके द्वारा यदि मैं किसी को गलत मार्ग पर मार्गदर्शन करूं, केवल इसलिए कि किसी झुंड ने कहा कि न्याय के दिन परमेश्वर मुझसे इसके लिए भुगतान करने को लगाएगा, लेकिन अधिक समय नहीं हुआ कि मैंने दर्शन देखा और उन लोगों को चिल्लाते हुए सुना कि आपको कल रात आपकी छोटी किताब मिली, वो बिजनेसमैन की वॉइस ये अच्छा है, यह दर्शन में हम इसे कभी तो पूरे विवरण के साथ छापेंगे, यह इसकी पूरी कहानी नहीं है, लेकिन उसमें और इसे देखते हुए और मैं वहाँ खड़ा हुआ था ठीक वैसे ही जैसे मैं अब यहाँ खड़ा हूँ, और मैं स्वयं को वहाँ पलंग पर पड़ा हुआ देख रहा था, अपनी पत्नी को देख रहा था, और फिर भी यहाँ खड़े होकर अपने आप को देख रहा था, और यहाँ चारों ओर वे लोग इस प्रकार से खड़े हुए थे। जब मैंने कहा क्या पौलुस का भी जो उसने प्रचार किया न्याय होगा, कहा हाँ, मैंने कहा तो मैंने हर एक वचन को ठीक उसी तरह से प्रचार किया है जैसे उसने किया था, और लाखों लोग चिल्ला उठे हम उसी पर विश्राम कर रहे हैं, जब मैं पार करूं तो मैं इसी तरह से होना चाहता हूं, देखा मैं चाहता हूं कि यह इसी तरह से हो, ठीक इसी तरह से, ठीक जो पौलुस ने कहा, इसमें एक भी चीज नहीं मिलाना चाहता हूं, ना ही एक भी चीज इसमें से निकालना चाहता हूं, ठीक वही जो बाइबल ने कहा, ठीक उसी रीति से मैं इसे जारी रखना चाहता हूं, देखा आपने, और निस्संदेह है आप इसे जारी रख सकते हैं, चारों ओर से संप्रदाय इसके विरोध में एक बाधा खड़ी करेंगे, और तब बहुत सी बार भाई लोग सोचते हैं कि मैं मेरे भाइयों के विरोध में हूं, तो अंतर क्या है, परमेश्वर जानता है, जब तक वो जानता है कि सत्य क्या है, समझे यह भाइयों के विरोध में नहीं, यह तो वो व्यवस्था है जो हमें भाई बनने नहीं देती, यह परमेश्वर का वचन नहीं है जो हमें भाई बनने से अलग रोकता है, यह तो वो व्यवस्था है जिसके हम सदस्य बनते हैं, वो हमें भाई होने से रोकती है, यह सही बात है, इसलिए हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए, वचन पर खड़े हो जाओ और परमेश्वर सब लोगों को इसके पास खींचेगा, यह सही है, इसी पर इसे कभी भी संगठित ना करें, इसे ना ही सांप्रदायिक करें, बस इसे परमेश्वर में बनाए रखें और बस आगे बढ़ते रहें, बस अंत को देखते रहें, कस कर पकड़े रहें, बाकी का परमेश्वर इसे ले आएगा। बहुत सी चीजें जो आपने मेरे लिए की हैं, मैं इसकी सराहना करता हूँ, अब यदि मैं आपकी सहायता कर सकूँ प्रार्थना के कपड़े या कुछ और देने के द्वारा, अब मुझसे शिक्षा को ना पूछें, क्योंकि मैं ऐसा करने की इच्छा नहीं रखता, बहुत से लोग मुझे विवाह और तलाक और इत्यादि के विषय में प्रश्नों को लिखते हैं, जो कि कलीसिया में एक उलझन है, मैं हमेशा उनका उल्लेख करता हूं और कहता हूं अपने पास्टर से पूछो, लोगों ने यहां मुझे चिट्ठी लिखी और कहते हैं इस विषय में क्या है और उस विषय में क्या है, मैं वापस पत्र का उल्लेख करता हूं, आप समझ जाएंगे, इन छोटी छोटी बातों के लिए अपने पास्टर से मिलें, जो कुछ भी है वो आपका चरवाहा है, देखिए वह वही वो एक है जिसे परमेश्वर ने आपकी देखरेख के लिए भेजा है, और हम इस पर असहमत हो सकते हैं और फिर इससे आपकी कलीसिया में गड़बड़ी का कारण हो सकता है, हम यह नहीं चाहते, नहीं नहीं, हम बस यह चाहते हैं कि आप पाप से भरी बातें छोड़ दें, वो बातें जो बाइबल से बाहर की हैं, और केवल परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएं, समझे, और यदि कोई छोटे छोटे मतभेद का कारण हो और इस प्रकार की बातें जिससे कलीसिया में परेशानी उत्पन्न होती है, इसलिए मैं बल्कि चाहूंगा कि आपका पास्टर आपको विवाह और तलाक के विषय में बताए, और ये बातें और वो बातें इसे उसे ही करने दें, वह भी परमेश्वर का दास है, और यदि वह इसे करने में सक्षम है, क्या याद है अच्छा सामरी जिसे वो घायल मनुष्य मिला, वह उसे सराय में लेकर आया, ये कलीसिया है, और वहाँ उस मनुष्य को 2 दिनार दिए और उसे बताया यदि उसे और भी आवश्यकता हो तो जब वह आएगा तो भुगतान करेगा, सो उसे 2 दिनार मिले, यदि वह परमेश्वर का जन है तो वह आपका इलाज कर सकता है, यदि वह परमेश्वर का जन है तो परमेश्वर के वचन पर स्थिर है, उसके पास वही है जो परमेश्वर ने उसे दिया है, आत्मा और वचन, क्या यह सही है, हमें आराधना कैसी करनी चाहिए, आत्मा में और सच्चाई में, और वचन ही सच्चाई है, क्या यह सही बात है। अब फिर से बहुत ही सहजता से आपका धन्यवाद, और अब मैं बहुत ही थका हुआ हूँ और इस दोपहर बहुत ही थक गया हूँ, जब तक मैं रहता हूँ मैं किसी और होटल में नहीं रुकूंगा, बड़ी शराब की पार्टी और सारी रात भर दरवाजे को पीटते और चिल्लाते हैं, और स्त्रियाँ, ओह मैं बस सारी रात बैठा रहा, ऐसा ही था, और सो मेरा कभी भी दूसरे होटल जाने का इरादा नहीं है, मैं एक होटल में जाऊंगा, मैं एक ट्रक ले लूंगा ताकि मैं उसमें सो सकूं, कहीं तो बाहर मैदान में मैं इसे ले लूंगा, मेरे लिए एक तंबू और सोने के बैग को, या कोई ऐसी जगह जहां मैं अपने आप में रह सकूं, यह सही है, कोई आश्चर्य नहीं यह राष्ट्र इतना पाप से भरा है, यह खोखला और अंदर तक सड़ गया है, ठीक यहां दूसरे स्थान में आपके राज्य में, ना ही केवल यही राज्य, हर जगह। Few years. ठीक यहाँ कुछ वर्षों पहले मैं यहाँ इस राज्य के बड़े शहर में यहाँ एक धार्मिक सभा में था और उस रात एक धार्मिक झुंड एक रूढ़िवादी कलीसिया के उनके नवयुवकों के साथ एक कन्वेंशन था। मैं कभी नहीं, मैं वुडू और इत्यादि जाति के साथ अफ्रीका में था, मैंने इस प्रकार कभी नहीं सुना। और अगली सुबह मैं आपको ठीक ठीक नहीं बता सकता, हम मिले जुले श्रोतागण हैं, वे फर्श पर पड़े हुए थे, अनैतिक चीजें जो की गई थी, हर कहीं शराब की बोतलें थी और वे नवयुवक बच्चे लड़के और लड़कियां सारी रात एक ही कमरे में एक साथ थे और अगली सुबह उनका पवित्र पिता वहां बैठा हुआ था और वे आकर और उसके सामने इस प्रकार से झुके, यीशु मसीह के नाम के नीचे, क्या मैं पागल हो गया हूँ, मेरे साथ क्या बात है, मैं इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह कुछ तो ऐसी चीज है जो मुझे हिलाकर टुकड़े टुकड़े कर देती है। जब मैं ये देखता हूँ, क्या यही मेरे प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करने के लिए है? एक शराबी उन अनैतिक पार्टी उन चीजों के साथ उन नवयुवक पुरुषों और स्त्रियों पर प्रयोग किया जाता है, फर्श पर पड़े हुए हैं और उस कूड़ेदान में और बोतलें और ओह मेरे प्रभु, क्या आप इसे मसीहत कह सकते हैं? कोई आश्चर्य नहीं, संसार एक पाप से भरी अवस्था में है। अच्छा, वो पापी क्या कहता है जब वो इसकी ओर देखता है? उनमें से हजारों उन युवा लड़कियों ने इतनी पी रखी थी कि बड़ी कठिनाई से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और सारी रात उन लड़कों के साथ कमरे में थी और इतनी भद्दी गंदी बातें जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी। मैंने तकिए को अपने सिर पर इस प्रकार से रख लिया, सोने की कोशिश कर रहा था, वहाँ उन होटल की मंजिलों पर पिए हुए और इस प्रकार से ऊपर और नीचे मंजिल पर भागते फिर रहे थे वे धर्मी। अब मैं इस प्रकार के पापी लोगों से आशा करता हूँ, अब जो स्वयं को खिलाड़ी कहते हैं और यहाँ लोहे के बड़े बॉल को फेंकने के खेल में लगे हुए हैं, मेरे बच्चों में से एक लोहे के बड़े बॉल के खेल को खेलना आरंभ करेगा, मैं उसे देश से बाहर कर दूंगा। इसे खेल कहते हैं, यह खेल नहीं है, यह क्या है? यदि आप सही होना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ सही करें, सच है। मैं बाइबल में से आपके लिए कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूँ, आप इन कुछ शब्दों को देखते हैं जो मैं यहाँ विषय के लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो कि पहले राजा के 17वें अध्याय के पहले पद में मिलता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो बारिश बरसेगी और ना ओस पड़ेगी। पहला राजा पहला 17वां अध्याय पहला पद। किसी भी समय मैं आपको प्रार्थना का कपड़ा भेज सकता हूँ, तो बस मुझे लिखकर भेजें। यहाँ मेरा सचिव जो यहाँ पर उपस्थित है, भाई मगुईरे, हमसे कितने लोगों ने प्रार्थना के कपड़े प्राप्त किए हैं? आइए हम आपके हाथ देखें। भाई जिम खड़े हो जाएं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, आपको और आपकी पत्नी को भी। यहाँ मेरा सचिव और उसकी पत्नी है, वे ही है जो इस काम को करते हैं, जिसने भेजा, यही वो लड़का और लड़की है जो सभा से आपको आपका प्रार्थना का कपड़ा भेजते हैं। दोनों समर्पित मसीही हैं और वो आवाज, वो मीठी प्यारी सी आवाज जिसे आप सुनते हैं जब आप मुझे फोन करते हैं, वो वहाँ छोटी सी महिला बैठी हुई है, उसकी पत्नी, उसका पिता और माता और वे और आज यहाँ हमारे साथ हैं और प्रियजन सारे आसपास ही हैं। इसलिए और फिर आप मेरे प्रचार के कार्य क्षेत्र के सचिव को जानते हैं, श्रीमान मर्सियर, भाई लियो मर्सियर, वो यहीं कहीं पर हैं, और भाई जिन गोवार्ड, और इसलिए हम आपको प्रार्थना का कपड़ा भेज सकते हैं किसी भी समय, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, फोन पर आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम इसे करेंगे। यह अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति जो हाथ में छड़ी लिए हुए है, उसके कदम स्थिर थे, उसकी आंखें परमेश्वर की महिमा से चमकती हुई, उसकी दाढ़ी उसके एक ओर उड़ रही है, एक पुरानी बालों वाली भेड़ की खाल अपने चारों ओर लपेटे हुए वह अपने कदमों को उतना ही स्थिर बना रहा था जितना वह सामरिया के रास्ते पर चलकर जा रहा था। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उसकी ओर देखते, लेकिन उसके पास इज़राइल के महान राष्ट्र के लिए यहोवा यो कहता है वाला वचन था। हाँ, एलिया वो तिशबी प्रभु का एक भविष्यवक्ता, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उसकी ओर देखते, लेकिन उसके पास प्रभु का वचन था। वो राजा की उपस्थिति में खड़ा होने से नहीं डरता था, क्योंकि वह उस राजा से भी महान की उपस्थिति में था, वह यहोवा की उपस्थिति में था, इसलिए वो जानता था कि वो कहां पर खड़ा था। और जब वो राजा के सामने चलकर आया, वह ना तो तुतलाया और ना हकलाया, वो जानता था कि वह किस विषय में बात कर रहा था। वो राजा से कह सकता था, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ना तो वर्षा होगी और ना ओस पड़ेगी। उसने यह क्यों कहा? जब तक मैं न कहूं मेरे वचन के अनुसार, क्योंकि उसके पास प्रभु का वचन था। वह एक भविष्यवक्ता था और भविष्यवक्ता के पास प्रभु का वचन होता है। देखने में यह एक चौंकाने वाली बात है, पुराने नियम के इज़राइल और अभी के अमेरिका में समानता को देखना। वे दोनों ही बड़े राष्ट्र थे, वे दोनों ही स्थापित किए गए थे और उनके लोग वहाँ पर धार्मिक सतावट के कारण आए। इज़राइल फिरौन के द्वारा सताया गया था और सैकड़ों वर्ष तक बंधुआई में रहा, और उन्हें सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना से वंचित रखा गया था, और उस विशेषाधिकार से वंचित रखा गया था, और वे गुलाम बन गए थे। लेकिन परमेश्वर ने अपनी बाइबल में उनसे प्रतिज्ञा की थी, या अपने वचन में और अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कि वह उन्हें एक देश देगा, और वे इस देश में आएंगे और उस देश के कब्जा करने वालों को बाहर निकाल देंगे और उनके उत्तराधिकार पर अधिकार किया, क्योंकि ऐसा करने के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य था। और ऐसे ही हमारा यह महान राष्ट्र है, हम यहाँ पर आए हैं और प्लायमाउथ रॉक पर इस राष्ट्र की स्थापना हुई थी। धर्म की स्वतंत्रता पर, क्योंकि हमारे पूर्वज रोम से आधुनिक इजेबेल के तंत्र के सतावट के कारण भागे थे और यहाँ पर आ गए, और बहुत सी बड़ी बड़ी सतावटों और बलिदान जो कि इजाबेल के झूठे तंत्र में खड़े रहे। और बाइबल के अनुसार प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय, परमेश्वर ने उनके लिए एक सुखद स्थान की प्रतिज्ञा की थी, और एक स्थान उस स्त्री के लिए जिसे जंगल में ले जाया गया, जहां एक समय तक खिलाया गया था, समय और समय के विभाजन के लिए। परमेश्वर ने अमेरिका से प्रतिज्ञा की थी या कलीसिया से, स्त्री से, कि इस देश में आए। क्या आपने प्रकाशित वाक्य 13 पर ध्यान दिया? दूसरे सारे पशु समुद्र के जल में से ऊपर आए। प्रकाशित वाक्य 17:17 ने कहा, जो पानी तूने देखे वह भीड़ और बहुत से लोग हैं। दूसरे सारे पशु वे पानी में से ऊपर आए, भीड़ और बहुत से लोग हैं, लेकिन जब संयुक्त राज्य ऊपर आता है, यह पृथ्वी पर से आता है जहाँ कोई लोग नहीं थे। और याद रखें, जब यह ऊपर आता है तो यह एक छोटे मेमने के समान दिखाई पड़ता है। अब इस मेमने के दो सींग हैं, और यही नागरिक और कलीसिया संबंधी शक्ति है, लेकिन जब वे एक हो गए हैं, याद रखें, तब वह मेमना बोला जैसे अजगर उसके सामने बोला था, और वह अजगर रोम था। जब वो अजगर स्त्री के सामने खड़ा हुआ कि जैसे ही वो बालक को जन्मे उसे निगल जाए, लाल अजगर इज़राइल स्त्री के सामने कौन खड़ा हुआ कि उस बालक को निगल जाए जैसे ही वह उसे जन्म दे। और एक सतावट को भेजा और 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मार डाला। रोम वह अजगर स्त्री के पास खड़ा हुआ कि जैसे ही वह बालक को जन्म दे उसे निगल जाए। और तब हम पाते हैं कि यह राष्ट्र एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा, और एक मेमना था जिसका अर्थ है परमेश्वर का मेमना।
That we have
लेकिन कुछ समय के बाद वह वैसा ही तंत्र जो हमारे पास है अजगर के समान बोला और उस सारी शक्ति को उपयोग में लाया जो उसके पहले अजगर के पास थी। वे ठीक एक दूसरे के समानांतर हैं सिद्ध रूप से। और याद रखें, जब ये इज़राइल ऊपर आया और उसके राष्ट्र को ले लिया और फिलिस्तीन देश पर कब्जा करने वालों को निकाल दिया और देश का अधिकारी हो गया, हमने अंदर आकर और इसे इंडियन लोगों से ले लिया, उन्हें बाहर खदेड़ दिया और देश पर अधिकार कर लिया। इसके लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य था। परमेश्वर संसार को दिखाने जा रहा था कि वह कुछ थोड़े से लोगों के लिए क्या कर सकता था जो स्वतंत्रता को चाहते थे और धर्म की स्वतंत्रता, ताकि परमेश्वर की सेवा करें। उन्होंने इसराइल के लिए क्या किया? उसने इसराइल को संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया और वह उसी स्थिति में बना रहेगा जब तक कि परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं होता है। उसने अमेरिका के साथ क्या किया? उसने इसे संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया जब तक कि वह परमेश्वर की इच्छा से बाहर न हो जाए। समांतर एक से दूसरे में बिल्कुल ठीक। जब इसराइल देश में आया, वे एक महान लोग थे क्योंकि उनके पास एक महान नेतृत्व था। वहाँ उनमें परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, जैसे कि दाऊद, सुलेमान राजा, सारा संसार उनसे डरा और उन्होंने बिना युद्ध, बिना संकट के उस सौभाग्य का आनंद लिया और परमेश्वर की सामर्थ के नीचे रहे, इतना तक कि सारे ज्ञात संसार के लोग उन्हें देखने के लिए आ गए। परमेश्वर ने उन्हें विचारों को परखने का दान दिया। यह दान सुलेमान पर था। और दक्षिण की रानी वहाँ से शीबा की रानी बहुत दूर सहारा के रेगिस्तान को पार करके आई। उसे आने के लिए 3 महीने लगे केवल सुलेमान की बुद्धि की बातें सुनने के लिए। और जब उसने देखा कि सुलेमान आत्माओं को परख सकता है और उसके हृदय के भेदों को भी जान सकता है, उसने कहा, मैंने जितना तेरे विषय में सुना था वो सही था और उससे भी अधिक है। उसने स्वीकार कर लिया था कि वो सब परमेश्वर था। और अमेरिका हमारे पूर्वजों के आधार पर, जो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आए, उन दिनों में हमारे यहाँ धर्मी पुरुष एक मार्गदर्शक के रूप में थे। जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, जाने माने चरित्र के व्यक्ति, परमेश्वर के लोग। उन दिनों में अमेरिका अमेरिका था। जॉर्ज वॉशिंगटन यहाँ घाटी फोर्ज में, इससे पहले कि वह डेलावेयर को पार करता, सारी रात प्रार्थना करता रहा, इतना तक कि वह अपनी कमर तक भीग गया था, बर्फ में घुटने टेके हुए था। और अगली सुबह जब अमेरिका के लोगों ने पार करना आरंभ किया, उनमें से केवल 20% लोगों के पास पहनने के लिए जूते थे, अमेरिकन सेना। लेकिन उनका एक सिद्धांत था, उनके पास कुछ तो था जिसके लिए उन्हें लड़ना था। उन्होंने चिंता नहीं की कि क्या होता है। किसानों ने आकर उसने अपना हल रोक दिया और अपने बैल को अलग किए और अपनी बंदूक को लिया और जो भी स्वतंत्रता के लिए जानता था लड़ने के लिए निकल पड़ा। और अगले दिन, मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा था 4 या 5 गोलियों के छेद, बंदूक की गोलियाँ उसके कोट और टोपी में लगी और उसे बिल्कुल भी नहीं छू पाई। परमेश्वर के लोग, जिन्होंने इस राष्ट्र की नींव रखी, महान लोग, कोई आश्चर्य नहीं उन्होंने लिखा, लंबे समय तक हमारा देश चमकता रहे स्वतंत्रता के पवित्र प्रकाश के साथ। हमें अपनी सामर्थ्य के द्वारा सुरक्षित रख, महान परमेश्वर हमारे राजा। कुछ समय पहले मैं एक बूढ़े व्यक्ति से कॉरिडोन, इंडियाना में बातें कर रहा था। उसने मुझे इस विषय में बताया जब राजधानी कॉरिडोन में थी, और कैसे वह बताया कि कैसे वो एक बैलगाड़ी में उस गवर्नर का भाषण सुनने गया था। और वो और गवर्नर केवल 2 ही ऐसे लोग थे जिनके पास 2 भाग वाला सूट था। बताया वह भेड़ों को पाला करता था और उनका ऊन निकाला और उनके ऊन को धोया। उसकी बहन इसे बुनकर और उसके लिए एक कोट बनाया कि उसके पैंटों के साथ मेल खाए। और वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ था, लगभग 85 या 90 वर्ष की आयु का था, अपनी दाढ़ी इस प्रकार खींची और उसने कहा, बिल्ली, यह तब की बात है जब अमेरिकी अमेरिकी थे। मैंने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और मैंने सोचा, लड़के तुम यहाँ बहुत से युवा लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप सत्य बता रहे हैं। इसराइल को इस धार्मिक पृष्ठभूमि के बाद क्या हो गया? वे लापरवाह होने लगते हैं। वे उस स्थान पर आने लगे जहाँ पर उन्होंने परवाह नहीं की कि क्या हुआ था। वे परमेश्वर की उनकी आराधना में ढीले पड़ने लगे, यद्यपि उन्होंने धर्म का एक रूप धारण किया था, जैसे हमारे पास है। उन्होंने एक भक्ति का रूप धरा था, लेकिन वे उनके लोगों के संग स्वतंत्र होने लगे और वे उनकी कलीसिया में विभिन्न विधर्मियों को लाने लगे। बालाम की आराधना भी धीरे धीरे अंदर आने लगी और इजराइल सुख विलास के लिए पागल हो गया, शराब पीना और इस प्रकार की बातें करना, और अंत में एक ऐसे अगुवे को वहाँ ले आए जो परमेश्वर को नहीं जानता था, अहाब, जो अपने पिता के स्थान पर आया और उसका पिता एक अधर्मी मनुष्य था, धनी मनुष्य लेकिन एक अधर्मी मनुष्य, और उसने जितने पाप किए उतने उससे पहले किसी ने भी नहीं किए थे। लेकिन इज़राइल उनके नशे में धुत होकर उन्होंने एक ऐसा मनुष्य रखा और उसे सिंहासन पर बैठाया कि उनके ऊपर राज्य कर सके। उन्होंने सोचा कि यह पूरी तरह सही है, ठीक जैसे कि आज बहुत से अमेरिकन लोग करते हैं। वह एक अच्छा राजनीतिज्ञ है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह एक अच्छा राजनीतिज्ञ है। बहुत से अमेरिकी लोगों ने, उनमें से बहुतों ने एक अमेरिकन के रूप में अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेच दिया और कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, जब तक तुम्हें सरकार से कुछ अतिरिक्त डॉलर मिलता है और जीते हो, और वे पेट के लिए बिक गए और अभिलाषाओं के लिए और पाप से भरे संसार की लालसाओं में, और उस बात को भूल गए कि हम किस लिए प्लायमाउथ रॉक पर आए थे। वे हमारे वारिसाना हक को भूल गए और जाकर और सुख विलास के लिए पागलों की भीड़ में स्वयं को बेच दिया। जैसा ये इसराइल के दिनों में था वैसा ही होता आया है, इसलिए अमेरिका ने भी उसी मार्ग को लिया, ठीक उसी सुख विलास के मार्ग को। कुछ समय के बाद सरकार ने पाप का समर्थन किया। बस जब तक आपके पास आराधनालय है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक यही है जो अमेरिका ने किया, और हमने स्वयं को आपस में संगठित करना आरंभ कर दिया और छोटे छोटे झुंड बना लिए और अधिक पापी और अधिक पापी और अधिक पापी होते गए। हमें अपने मूल सिद्धांत पर बने रहना था जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। पाप कलीसियाओं में प्रवेश करने लगा, जैसा कि यह तब हुआ था। महिलाएं अपने बाल कटवाने लगी, असभ्य कपड़े पहनने लगी, उन्हें हर वर्ष काट कर छोटा कर रही हैं, और पुरुष ऐसा वैसा और इत्यादि करने लगे और ताश खेल रहे थे आराधनालय में और बंको खेल करने लगे, और ठीक वैसे ही संसारिक जैसे वे थे, सुख विलास के लिए पागल, शराब के नशे में धुत, धर्म विद्यालय से सेवक डिग्री को ले रहे हैं और बिशप कह रहे हैं, लड़को जो भी तुम चाहो प्रचार करो। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, यीशु मसीह का लहू 1900 वर्ष पहले सूख गया था? यहाँ तक कि कलीसिया के पास सिवाय संस्थागत होने को छोड़ और कुछ भी नहीं, एक लॉज के जैसे होने पाए। आप इस दोपहर को कभी ना भूलें, एक लॉज के समान बन गए हैं। संसार ने इसके अंदर धीरे से आना आरंभ कर दिया है। सेवक लोग समझौता करने लगे हैं, जैसे कि अहाब के दिनों में किया। पाप से भरे हुए, अंदर तक सड़े हुए, और ये उतना ही आगे बढ़ता गया जितना जा सकता है। यद्यपि परमेश्वर उनके पास एक के बाद दूसरा भविष्यवक्ता भेजता रहा और कोमल दया के साथ उसने लोगों से आग्रह किया, और इस पर उन्होंने अपनी पीठ फेर ली। वे अपने मार्ग को चाहते थे, वे इजरायली थे, वे स्वतंत्र थे, वे एक महान राष्ट्र थे। उनके पूर्वजों ने ऐसा और ऐसा किया दाऊद और सुलेमान वे जो चाहते थे कर सकते थे। ठीक वही चीज जिसके ऊपर हम आधारित हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे पूर्वज वॉशिंगटन और जिसके लिए वे खड़े हुए। लेकिन भाई हम उन बातों से लाखों मील दूर हैं, हमारी कलीसियाएं लाखों मील दूर हैं। वे पुराने, आज वो मेथोडिस्ट कलीसिया जिसके लिए मेथोडिस्ट कलीसिया हुआ करती थी, आज पेंटिकॉस्टल क्या है और ये क्या हुआ करते थे, आज बैप्टिस्ट क्या है ये क्या हुआ करते थे। हमारे पास पीछे जाकर और जॉन स्मिथ के विषय में बातें करने का समय होता था और बहुत से जो आरंभ के सुधारक थे, जॉन स्मिथ ने कहा, उसके मरने से पहले उसने कहा, भयानक बात यह है कि मेथोडिस्ट महिलाओं ने उनकी उंगलियों पर सोने की अंगूठी पहनना आरंभ कर दिया है। मेथोडिस्ट आज वो उन्हें कटे हुए बालों के साथ देखकर क्या कहेगा और उनका सारा मुंह रंगा हुआ छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं, यह पाप के कारण है। परमेश्वर ने अमेरिका में क्या किया है, बेदारी के बाद बेदारी को भेजा, बेदारी के बाद बेदारी, सेवकों ने वचन का प्रचार किया है, लोगों को वापस परमेश्वर के पास लाने का प्रयास किया और उन्होंने क्या किया, वही चीज इज़राइल ने किया था, इसे तिरस्कार किया, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पवित्र शोर मचाने वाले कहा, उन्हें जेल में डाल दिया। यदि आज इस कलीसिया में से मेरी एक बहन और मेरे भाइयों में से कोई एक पिछली रात उस होटल में खड़ा होता और अपने हाथों को उठाकर और परमेश्वर की स्तुति करता और उस कमरे में चिल्लाता, इस बात पर वे आज जेल में होते। लेकिन एक शराबी, मदहोश, मोटी बुद्धि के लोगों का झुंड, अपवित्र शोर करने वाले वहाँ खड़े होकर सारी रात चिल्ला सकते हैं और शराब पीकर और गाली देते हैं और उन स्त्रियों के कपड़े उतारते और ऐसे ही करना जारी रखते हैं और फर्श पर पड़े रहकर और सारी रात चिल्लाते हैं और वे यहाँ तक इसके लिए एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, हम परमेश्वर के हाथ के नीचे अपराधी ठहरे हैं। ध्यान दें, बार बार परमेश्वर ने सेवक भेजे उसके वचन को प्रमाणित करने के लिए चिन्ह और अद्भुत कार्य किए और अधिकांश बातें बहुत से आधुनिक कलीसिया के याजक पद प्राप्त व्यक्ति ने इसे ठुकरा दिया और हर एक बेदारी का मजाक उड़ाया, जो कि नाम की कहलाने वाली मसीह की कलीसिया, और वे लोग कहते हैं आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, इसे परमेश्वर के उस छोटे से बचे हुए से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा इज़राइल में था वैसा ही आज भी है। बहुत सी बार परमेश्वर को अपने लोगों को उन संगठनों और संप्रदायों में से बाहर निकालना पड़ता है, उन्हें अकेला जंगल में ले जाकर उनसे बात करता है और वह बचे हुए को लेने जा रहा है। आप इसके लिए चिंता न करें, उसने ऐसा तब किया, वो अब करेगा। और इसी प्रकार वे पाप में आगे और आगे बढ़ते रहे, इन चीजों से भरते रहे। क्यों? उनका नेतृत्व इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, ईमानदारी से मैं बहुत से राष्ट्रों को जानता हूँ कि यदि वे ऐसे लोगों को इस प्रकार के वस्त्र को रास्ते पर पहने हुए पकड़ लें जैसे हम यहाँ अमेरिका में पहनते हैं तो उन्हें जेल में डाल देंगे। जब मैं रोम में संत एंजेलो गया, अब इस पर सोचें कितनी यह गिरी हुई बात है। वहाँ उन्होंने एक बोर्ड लगाया था, उस संत एंजेलो भूमार्ग कब्रिस्तान के द्वारा, अमेरिकन स्त्रियों के लिए कृपया कपड़े पहने और मरे हुओं का सम्मान करें। यदि कोई चीज जो आपको निराश करती है, ये उन नाम के कहलाने वाले अमेरिकी लोगों को भीतर आते हुए देखना है। मैं वहाँ लासाने में बैठा हुआ था, एक दिन मैं और भाई ऑर्गन ब्राइट, हम कुछ मांस के टुकड़े का आनंद ले रहे थे। अगले दिन हम फिर वहाँ गए क्योंकि ये अच्छा खाना था, मैं वहाँ थोड़ा पानी ले जा सका। वे शराब को छोड़ और कुछ नहीं परोसते हैं और मुझे पानी चाहिए तो मुझे अपनी बगल में एक जग पानी सारे समय रखना पड़ता था क्योंकि वे आपको टेबल पर पानी नहीं परोसते हैं। तब मैं वहाँ गया और सब कुछ तब तक ठीक था जब तक मिस अमेरिका वहाँ नहीं आ गई, जो उस छोटे से गंदे घिनौने घुंघराले बाल वाले कुत्ते के साथ आई थी, इस तरह से सस्ते दुकान के जेवरों को पहने हुए और सिगरेट को दूर इस तरह से पकड़े हुए वो वहाँ बैठ गई, कुछ ऐसा दिखावा करते हुए जो वो वास्तव में नहीं थी, और घुंघराले बाल वाले कुत्ते को टेबल पर बैठा लिया। गंदी बद्दी सी चीज, एक कुत्ता सबसे बुरी चीज है जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा, यहाँ तक कि उनका दशमांश भी परमेश्वर के भवन में नहीं दिया जा सकता, यह वेश्या के समान है। वेश्या का दशमांश, यह बाइबल ने कहा, और फिर भी आप वहाँ पर हैं। वे बच्चों के जन्म को रोकने के लिए उपाय करते हैं और लगभग हजारों डॉलर देते हैं उस छोटे से कुत्ते के लिए और अपने आसपास रखते और उसे बालक का सा प्रेम देते हैं ताकि वो सारी रात बाहर रह सके और बच्चों के जन्म को रोकने का उपाय करती हैं। आगे क्या बात रुकी हुई है सिवाय अंधव्यवस्था के? हो सकता है आप मेरी आवाज को फिर कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को याद रखें, हम अंत में हैं। वहां हम पाते हैं कि क्या घटित हुआ, क्या हुआ अंत में? वो बड़ी घड़ी आ गई। अहाब को चुना गया था और जब वो चुना गया उसने इजाबेल से विवाह किया, वो पुरानी सड़ी स्त्री जिसने मूर्ति पूजा के लिए समस्त इज़राइल की अगुवाई की। और जैसा इज़राइल ने तब ऐसा किया, यह क्यों? वे अवश्य ही पिछड़ने वाली स्थिति में रहे होंगे कि इस प्रकार की एक चीज को उन्होंने अपने देश में होने दिया। कानून लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाए गए और हमने भी वही काम को किया है। एक ऐसा समय था कि जब अमेरिकी लोग नहीं करते, वे इसे भली प्रकार जानते थे कि एक पुरानी वेश्या, पुरानी व्यभिचारी जिसने शहीदों का लहू पिया, उन्हें मार डाला और इसी कारण से वे यहाँ स्वतंत्रता के लिए भाग कर आए। वे किसी भी इस प्रकार की कोई भी चीज को नहीं सहेंगे। यह दर्शाता है कि हम पिछड़ी हुई दशा में हैं, समस्त राष्ट्र इस प्रकार का चुनाव करके। ओह, निश्चय ही अब आप में से कुछ अच्छे पुराने ख्यालों वाले डेमोक्रेट से सोचेंगे कि ओह अच्छा, वो एक अच्छा राजनीतिक प्रधान बनेगा। तर्क के लिए यह सही लग सकता है शारीरिक मन को, लेकिन परमेश्वर के वचन और आत्मिक मन वालों के लिए इसका कोई मायने नहीं रखता है, निश्चय ही नहीं रखता है। थोड़े से अतिरिक्त डॉलर कम कर देते हैं और कुछ टैक्स या ऐसे ही कुछ तो काट देते हैं। और हमारे पास कठिन समय है, हमारे मिशनरी आज कार्य क्षेत्र में हैं, क्योंकि अब हमें एक कैथोलिक राष्ट्र समझा जाता है। क्यों? निश्चय ही रूस को साम्यवादी समझा जाता है क्योंकि उनके पास एक साम्यवादी नेता है। लाल चीन को साम्यवादी समझा जाता है क्योंकि उसके पास एक साम्यवादी नेता है। हमें कैथोलिक समझा जाता है क्योंकि हमारे पास एक कैथोलिक नेता है। ओ, जब अहाब सिंहासन पर था, आप कहते हैं वो सिंहासन पर था, यह सही है, लेकिन उस सिंहासन के पीछे इजाबेल प्रमुख थी। वही वो एक थी जिसने उस अगुवाई के काम को किया। देखिए कैसे उसने उस देश के उसी कानून को लिया और उन्हें घुमा दिया और अपने लाभ के लिए और लालच के लिए, और इसे अहाब से करने को लगाया क्योंकि उसने उससे विवाह किया था। और आज इसी तरह से हमारे नेताओं के साथ है। मैं यह नहीं कहता कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन देखो उसके पीछे कौन है, वो वेश्या, उसी चीज को जिसे हम यहाँ चला रहे हैं, अमेरिका होने के लिए, उन्हीं सिद्धांतों पर जिस पर अमेरिका को बनाया गया। हमने अपने ही स्वतंत्र चुनाव के द्वारा इस प्रकार की चीज को चुना है। अब आप देखिए क्यों मेरी आवाज बहुत ही जल्द बंद कर दी जाएगी, लेकिन कोई तो इसे समझने जा रहा है। हाँ, क्यों? प्रकाशित वाक्य 2:20, वह स्वयं को भविष्यवक्तनी कहती है, आप बस पाप की लहर पर ध्यान दें जो अब हो रहा है। आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखिए, आप आधुनिकतावादी को देखें, अब भक्तिपूर्ण चीजों को देखें जो कलीसियाओं में हो रही है, और अंत में वहाँ एक सतावट आएगी। बाइबल ऐसा कहती है, यहोवा यो कहता है, निश्चय ही ऐसा होगा। तब क्या होने जा रहा है? ठीक जैसा ये तब हुआ था वैसे ही ये अब होगा। वह इसके पीछे की शक्ति थी, वही वो एक थी जिसने इसका नियंत्रण किया था। पढ़िए, मैं विश्वास करता हूँ यह 17 या 18 अध्याय है, वहाँ आप पाएंगे कि इजाबेल ने क्या किया, कैसे उसने अहाब को लिया और वह इसके विषय में कुछ नहीं कह सका क्योंकि यह उसकी पत्नी थी। देखिए तब राष्ट्र किस पर बनाया गया था, एक पिछड़ा हुआ इजरायली मूर्ति पूजक पत्नी के साथ जो उसके पीछे थी, जो कि बालाम की आराधना करने वाली थी, और उसने क्या किया, उसने अंत में हर चीज को इतना आधुनिक बना दिया और इतना अच्छा, और लोगों के लिए ये बहुत ही सरल था, इतना तक कि सारी कलीसिया उसी में गिर गई, प्रचारक और वे सारे। क्या एलिया ने नहीं कहा, प्रभु केवल मैं ही एक बचा हूँ? और जैसा ये तब था, आज ये उसी के समांतर है। वे सारे के सारे कुछ भी कहने से डरते थे। क्या यह आज बिल्कुल ठीक वही बात नहीं है? वे कुछ भी कहने से डरते थे, इसलिए हम पाते हैं वे बस ढीले ढाले, लापरवाह, शराबी, मौज मस्ती में डूबे हुए, सुख विलास के लिए पागल और बाकी की हर एक चीज जैसा कि यह आज है। इजाबेल उन वचनों को घुमा रही है। वो क्या? मेरा मतलब ये कानून जैसे इजाबेल घुमाएगी। याद रखें, इजाबेल वो स्वयं को भविष्यवक्तिनी कहती थी ताकि लोगों को अपने वश में रखे, और वो ये कहती थी कि धरती पर केवल वही परमेश्वर की आवाज है। वह शारीरिक मन से वैसे ही विश्वास करवाने को लगाएगी जैसे कि संसार निश्चित है। संयुक्त राज्य में एक महिला की आराधना आएगी और वह मरियम होगी। मैंने इसे 1931 में देखा। सात बातें घटित हुई। मैंने ये बातें यहाँ मेरे पास कागज पर लिखी हुई हैं। इसे 1931 में लिख ली। जिस तरह से मैंने कहा, यह राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यही वो सारी दुनिया का कारण होगा। इसे सहायता करने में दुनिया को युद्ध में डाल देगा। अभी तक युद्ध में नहीं आया था, तनाव के समय में। मैंने कहा दूसरी बात, और मेरी माँ जो पुराने ख्यालों वाली लोकतंत्रवादी थी, उसने मुझे उस समय तेज नजर से नहीं देखा जब मैंने ऐसा कहा। मैंने कहा मैं चिंता नहीं करता यदि वह एक रिपब्लिकन था या यदि वह एक समाजवादी था या जो भी वो था। यह यहोवा यो कहता है वाला वचन है। और मैंने कहा ऐसा करते हुए वे महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे रहे हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो उन्होंने अब तक के इस राष्ट्र के किए गए सबसे बड़े अपमानजनक काम को किया है। और मैंने कहा किसी दिन वे इसकी कीमत चुकाएंगे, और उन्होंने ऐसा पिछले चुनाव में किया। यही है जिस बात ने उसे चुना, वे महिलाएं। और आप बहुमूल्य अश्वेत लोगों ने दक्षिण में, आप लोगों ने किस तरह से वोट दिया? आप कहते हैं आपका पुलपिट पर से ऐसा कहने का कोई काम नहीं है। ओ हाँ, मेरा काम है। यह परमेश्वर का वचन है। और अब्राहम लिंकन के दाग, वो एक जिसने आपको स्वतंत्र किया, उस संग्रहालय में एक स्त्री के वेश में रखे हुए हैं, और आप अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बेच देते हैं। आपको शर्म आना चाहिए। और आप लोग राजनीति के लिए, क्योंकि बस आप एक अच्छे डेमोक्रेट हैं, इस प्रकार की किसी चीज के लिए वोट दिया और अपने अमेरिकन और मसीहत के जन्मसिद्ध अधिकार को बेच दिया कि इसे उस वेश्या को दे दें जो हमें इस राष्ट्र में चलाती है। हम क्या हो गए? हम क्या थे? देखा यह किस तरह से धीरे धीरे अंदर आ रही है, बहुत ही आसानी से। इतना तक वो सिंहासन पर आ गई है, निश्चय ही व्हाइट हाउस के सिंहासन पर। ध्यान दें, पहले ही क्या आपने उस दिन कैथोलिक स्कूलों और प्रोटेस्टेंट स्कूलों के विषय में देखा? कैथोलिक स्कूल का समर्थन करते हैं लेकिन प्रोटेस्टेंट का नहीं, समझे? ओ भाई, आप चीजों की लहर के लिए देखें जो अब आगे आ रही हैं। ध्यान दें, और जैसा उन्होंने इसे किया है, देखो क्या बात ने जगह ली। इस सारे पाप का ढेर लगते जा रहा है, एक स्थान पर पहुंच रहा है और राष्ट्र को एक प्रकार के लड़खड़ाने वाले स्थान पर लेकर आया है। कुछ वर्ष पहले जब उनके पास पहले पेंटिकॉस्टल सामने आए, इसने कुछ वर्षों पहले राष्ट्र को बचाया जब एल स्मिथ चलाने जा रहा था। अमेरिका तब इसे भली प्रकार से जानता था, लेकिन पेंटिकॉस्टल इतना सांसारिक हो गया, ये इसमें आगे बढ़ता चला गया और एक मसीही के रूप में अपना जन्मसिद्ध अधिकार राजनीति को बेच दिया, और ये बाइबल के आगे की राजनीतियां हैं। ओ प्रभु, अब जरा एक मिनट और ध्यान दें कि बस ये कैसे बाहर आता है। अब हम पाते हैं कि उन्होंने क्या किया, और वे चीजें जो उन्होंने की, हम उन्हें यहाँ बिल्कुल ठीक समांतर में देखते हैं। हर जगह पाप है। इजाबेल भीतर आई और उसने सब लोगों को सम्मोहित कर दिया, और ध्यान दें अंत में उसने बालाम के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाना आरंभ कर दिया। क्या ये सही है? और बालाम के याजक गण हर कहीं से उस स्थान पर झुंड में आ गए और देश को बालाम की आराधना से दूषित करने लगे। देखो उन्होंने क्या किया है, देखो उन्होंने कैसे जाल बुना है। बस वही चीजें जो उन्होंने की है। देखिए आज वे कहां पर हैं? कैथोलिकों की ओर देखो, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। उसमें विवाह कर रहे हैं, इसे तोड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक जो दानियल ने कहा कि वे ऐसा करेंगे। लोहा और मिट्टी आपस में मिश्रित नहीं होंगे, लेकिन उनके बीज एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, टूट रहे हैं। हर प्रोटेस्टेंट लड़की जो कैथोलिक लड़के से विवाह करेगी, वह अपने बच्चों को कैथोलिक परवरिश करेगी। सभी इस प्रकार से विवाह कर रहे हैं, मिश्रित हो रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ तक कि पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका भीतर ही भीतर प्रभावित हो गया है। हम मिशनरियों के रूप में हम क्या करने जा रहे हैं? वहाँ उस ओर जा रहे हैं ताकि दक्षिणी अमेरिका को स्वतंत्र कराएं और समस्त संसार का भाग टॉमी ऑसबर्न और वे लोग लोगों को मूर्ति पूजा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वे वापस उंगली उठाकर संकेत कर सकते हैं कि हमने अपना अगुआ चुना है। और वही चीज, हे परमेश्वर, इस संसार का क्या होने जा रहा है, ये यहाँ हर व्यक्ति को हिला देना चाहिए। हम कैसे उत्तर देंगे? मिशनरी क्या कहने जा रहे हैं जब वे कहते हैं तुम यहाँ हमें इससे छुड़ाने आए हो और तुम्हारे अपने ही लोग इसी चीज को अपने कार्यालय में बैठाते हैं सिंहासन पर? हम कैसे करेंगे? क्या इतिहास के पन्नों में पीछे की ओर देखें, पीछे मुड़कर देखें और देखें क्या ये सचमुच लगभग इसके लिए असंवैधानिक नहीं है? वे ऐसा वर्षों पहले नहीं करते थे, लेकिन देखिए हमने अपने मसीही अधिकारों को राजनीति के लिए बेच दिए हैं। और इसी तरह शैतान अपने आप को इसमें बूनता चला जाता है। आहाब कुछ भी नहीं था, वो केवल इजाबेल के हाथ की कठपुतली था। बस यही सब होगा, बस हाथ की कठपुतली। वो इसे स्वयं से नहीं करेगा, लेकिन जो व्यवस्था उसके पीछे है वो उसे इसके लिए चलाएगी। बिल्कुल सही बात है। आप जो मसीही हैं, अपने विवेक को चिमटी लो, स्वयं को जगाओ, कहीं आपके सोचने से भी अधिक देरी न हो जाए। जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस परिस्थिति में वे थे, और कैसे उन्होंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया, कैसे परमेश्वर का महान प्रेमी हृदय अवश्य ही रोया और चिल्लाया होगा जब उसने अपने मिशनरी लोगों को देखा, उन्हें एक उदाहरण बनाया। सारे राष्ट्र हर स्थान से आ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया था। उन्हें एकता में देख रहा है, आत्मिकता में परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, और तब ये सोचते हैं कि उसने उन्हें उनके पहले वाले प्रेम में वापस देखने की लालसा की, और जो सही है उसी चीज को करें। लेकिन वे निरंतर दूर और दूर और दूर होते चले गए, यहाँ तक अंत में कि इजाबेल भीतर आ गई। हमने बिल्कुल यही किया है, मसीह के सिद्धांतों से भटक गए। जब परमेश्वर ने अपने सेवकों को समस्त राष्ट्र में भेजा, उन्होंने पवित्रता को प्रचार किया, पिलग्रिम होलीनेस, नाजरीन, पेंटिकॉस्टल, परमेश्वर की ओर वापस फिरें, परमेश्वर की ओर वापस फिरें। और वास्तविक पुरानी स्थापित कलीसियाएं बस हस्ती और उपवास उड़ाती हैं। उनमें से बहुत से विश्वासी आधुनिक हैं। क्यों? वे हर एक चीज को दोषी ठहराते हैं जो उन लोगों ने किया, और कहा ये शैतान की ओर से था, इसने क्या किया, और कलीसिया ने इसको सुनना आरंभ कर दिया, अधिकांश ने सुनना आरंभ कर दिया। पहली बात, आप जानते हैं, यदि कैथोलिक स्त्री इस प्रकार की चीजें को पहन सकती है तो प्रोटेस्टेंट भी पहन सकते हैं। तब यदि कैथोलिक कलीसिया ऐसा कर सकते थे तो प्रोटेस्टेंट भी कर सकते हैं। तब यदि मेथोडिस्ट कर सकते हैं तो बैप्टिस्ट के विषय में क्या है? तब यदि बैप्टिस्ट कर सकते हैं तो पेंटिकॉस्टल के विषय में क्या है? देखिए, यही है जो मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्थाएं आपको अंदर लाती हैं। हालेलुया, यह सत्य है। यही कारण है कि मैं इसके विरोध में हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसके विरोध में है। मनुष्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था, परमेश्वर इसके विरोध में है, उसका वचन इसके विरोध में है, उसके भविष्यवक्ता इसके विरोध में होंगे, उसके सच्चे सेवक इसके विरोध में होंगे, वे सब जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं वे इसके विरोध में होंगे। देखिए इज़राइल का क्या हाल हुआ, वे कैसे लहरों के साथ बहते चले गए, यहाँ तक कि अंत में इजाबेल आ गई। देखिए अमेरिका का क्या हाल हुआ, और सांसारिक लहरों में बहते चले गए, यहाँ तक कि अंत में इजाबेल ने सिंहासन को ले लिया। यह सही है, अब इजाबेल असल में मिस्र के सिंहासन पर नहीं थी या इज़राइल का सिंहासन, लेकिन सिंहासन के पीछे वही मुख्य प्रधान थी। और कैथोलिक धर्म सत्ता संयुक्त राज्य के सिंहासन पर नहीं है, लेकिन इसके पीछे वो ही व्यवस्था है, क्योंकि इसने इससे विवाह किया है। और बाइबल ने कहा इस देश में वे इस पशु के समान एक मूरत बनाएंगे। ओह भाई बहन, क्या मामला है? खैर मैं जानता हूँ कि यह क्या है। बाइबल ने कहा कि वे इस लौतकिया युग में आएंगे और यही है जहाँ पर हम हैं। अब आप मुझसे घृणा कर सकते हैं, लेकिन एक दिन आप नहीं करेंगे जब आप जान जाएंगे कि सत्य क्या है। आप असहमत हो सकते हैं और खड़े होकर पैर पटक कर भवन से बाहर जा सकते हैं, यह बस आपकी अशिक्षा को दर्शाता है। लेकिन किसी दिन आपको एहसास हो जाएगा, किसी दिन आप लालसा करेंगे और जान जाएंगे कि यह सत्य है। मैं इसे प्रभु के नाम से बोलता हूँ। अपने आप को एक लक्ष्य के लिए ऊपर रखता हूँ जो अंत में मुझे कब्र की ओर ले जाएगा। जब तक मैं मरता नहीं हूँ, मैं इसका गवाह होऊंगा। यदि परमेश्वर मेरी सहायता करे, यह सही बात है। यहाँ हम इसी स्थिति में हैं जिसमें आज हम हैं। यह सब इसी तरह से चल रहा है। इसराइल में आहाब ने किस तरह से किया, वो इजाबेल के हाथ की एक कठपुतली था, क्योंकि वो उसने उससे विवाह किया था। अमेरिका हमारा अगुआ कैसे, आप जानते हैं कि हमारा अगुआ एक धनी मनुष्य था, कितने ये जानते हैं, एक करोड़पति। किसी ने मुझे बताया पत्रिका में या किसी रेडियो में या टेलीविजन या ऐसे ही कुछ, जैक बेनी या किसी ने एक बात कही, अर्नी फोर्ड, मैं सोचता हूँ कि यही था। किसी ने कहा कि उसके पिता ने उसकी दो राज्य लेने में सहायता की जो कि वह उसके अपने नहीं थे, बाकी भी उसी के होने वाले थे। उसे यह कैसे मिला, वह पैसा कैसे आया, उस विस्की के व्यापार और शराब के द्वारा। यही कारण है कि उसने विस्की और ऐसी ही चीजों पर टैक्स कम कर दिया। यही है जिसने उसे धनी व्यक्ति बना दिया। इसी चीज ने हमारे राष्ट्र को बर्बाद कर दिया। इसी चीज ने हमारे लोगों के दिमाग को भ्रष्ट कर दिया। इसी चीज ने हमारे लड़कों को शराबी बना दिया और हमारी लड़कियों को वेश्या बना दिया। उसी में से निकाले गए पैसे ने उसे धनी व्यक्ति बना दिया। वही चीज, वो पुरानी इजाबेल की व्यवस्था, इसी चीज ने हमारे लोगों को सताया। यही चीज उन्हें बाहर खींचकर रोमन वाद में और उन्हें जला दिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े किया और उनके साथ हर एक चीज को किया। शहीदों का वही लहू, बाइबल कहती है, ये उसमें है, वे वहाँ है, एक दूसरे से विवाह किया और हम अमेरिकी डगमगाते हैं। ओ ठीक है, हमारे पास कुछ अतिरिक्त डॉलर हैं और हमारा समय अच्छा है और बाकी के राष्ट्रों से अधिक बेहतर हैं, लेकिन भाई आप बस कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। आइए अब हम इसे शब्द दर शब्द लेंगे अगले कुछ मिनटों के लिए, देखेंगे क्या घटित हुआ। प्रचारक ठीक इसके साथ साथ चले और उनके साथ गिर पड़े, ठीक उनके साथ हो गए। सारी व्यवस्था के साथ, समस्त इसराइल की व्यवस्था ठीक इजाबेल के साथ साथ चली। उन्होंने एक भेष धरा था, जी हाँ। और क्या बाइबल नहीं बताती है कि अंतिम दिनों में हम एक भक्ति का भेष धरेंगे। सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई हैं, भाई हम अंत में हैं। राष्ट्रीय रीति पर हम अंत में हैं, आत्मिक रीति पर हम अंत में हैं, हर व्यवस्था अपने अंत में है। अगली चीज प्रभु का आगमन है और कलीसिया का रूपांतरण। परमेश्वर ने हर एक चिन्ह और आश्चर्य कर्म किए, सब कुछ किया जो वो कर सकता था, लोगों को वापस खींचने का प्रयास किया और वे निरंतर इसी पर आगे बढ़ते रहे। यहाँ इस नगर की ओर देखें, यहाँ इस राष्ट्र की ओर देखें, हजारों और हजारों पेंटिकॉस्टल लोगों के साथ और सत्य पर खड़े होने के कारण वे इस दोपहर को कहाँ पर हैं? क्योंकि किसी ने तो उन्हें बताया कि इन सभाओं में सहयोग ना करें, तुम बेचारे जानबूझकर। परमेश्वर आप पर दया करे, मैं केवल यही कह सकता हूँ। जबकि आप मसीही लोगों के पास इतनी भी दृढ़ता नहीं रही, तो तुम्हारे पास रीढ़ की हड्डी की जगह केवल दिखावटी हिम्मत रह गई है। सही है, हमें जो आवश्यकता है वो ये है, सुसमाचार को दांतों के साथ प्रचार करें। ये चीजों को टुकड़े टुकड़े कर दे, उन बाकी लोगों की तरह हो गए। तब आप सोचते हैं कि हम इसके विषय में क्यों चिल्लाते हैं, तब आप देखिए आपको ठंडी प्रतिक्रिया मिलती है। मैं इसकी अपेक्षा करता हूँ, मुझे करना ही पड़ता है। यह सब इसराइल में होता रहा। अंत में एक दिन जंगल में से एक कदम को पटकता हुआ आया, एक बूढ़ा बालों वाला व्यक्ति एलिया तिशबी आया। वो किसी संगठन में से नहीं आया, वो जंगल में से आया। उसका उनसे कोई मतलब नहीं था, वह प्रभु का एक भविष्यवक्ता था। भाई उसने इजाबेल के राज्य को हिला दिया, हर चीज जो उसमें थी। उन्होंने उससे घृणा की, उसके पास कोई सहयोग नहीं था। मैं आपको इसकी गारंटी दूंगा, बाइबल कहती है नहीं, निश्चित रूप से उसने उन मुंह रंगी हुई इजाबेलों को जलाया। मैं कल्पना करता हूँ उसने यूहन्ना के समान कुल्हाड़ी को पेड़ की जड़ पर चला दी, उसकी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जहाँ भी गिरे, लेकिन उसने वार ठीक जड़ पर किया। उसने राष्ट्र को हिला दिया यह दिखाते हुए कि वे गलत थे और उन्हें सच्चे जीवित परमेश्वर के पास वापस लाने की कोशिश कर रहा था, बजाय इजाबेल की आराधना के उसके वचन पर वापस लाए। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने उसे स्वीकार किया? उन्होंने उससे घृणा की, लेकिन उसका वचन वैसे ही आगे बढ़ा क्योंकि उसके पास यहोवा यो कहता है वाला वचन था। परमेश्वर ने उसके साथ काम किया और दिखाया वह अभिषिक्त भविष्यवक्ता था। उन बातों के द्वारा जो उसने कही वो घटित हुई और वह सब जो उसने किया इससे साबित हुआ कि वह परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। लेकिन वे फिर भी इसका विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उसने उनके खेलने के घरों को तोड़ दिया। उसने उन्हें बताया कि वे गलत थे। आहाब एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति था, यह सत्य है, और आप ध्यान दें उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने वैसा ही प्रचार किया। उसके साथ कोई भी प्रचारक सहमत नहीं हुआ। उसने कहा प्रभु केवल मैं ही एक बचा हूँ, उन्हें देखिए वे यहाँ तक कि कोई भी सहयोग नहीं करेगा, लेकिन उसके पास करने के लिए एक उद्देश्य था और उसने किया। उसके पास प्रभु का वचन था यहोवा यो कहता है, और उसने राष्ट्र पर आक्रमण किया, उसने कलीसिया पर आक्रमण किया, हर एक चीज जो वहाँ पर थी, और परमेश्वर उसके साथ था। हमसे प्रतिज्ञा है कि अंतिम दिनों में वह इस राष्ट्र में भी वापस लौटेगा। मैं जानता हूँ यीशु, जब मती 17 जब उन्होंने उससे पूछा शास्त्री क्यों कहते हैं एलिया, देखिए उसने क्या कहा, एलिया का पहले आना अवश्य है भूतकाल भविष्यकाल में, लेकिन तब उसने यूहन्ना का एक उदाहरण दिया। यूहन्ना मलाकी 4 नहीं था, यूहन्ना मलाकी 3 था। देखो मैं अपने आगे एक संदेश वाहक भेजता हूँ ताकि मार्ग को तैयार करे। मलाकी 4 उसने कहा इसके पहले प्रभु का बड़ा और भयानक दिन आए जब सारी धरती भूसे के समान जल जाएगी, उस दिन से पहले मैं एलिया को भेजूंगा। और यह यूहन्ना नहीं था क्योंकि जब यूहन्ना आया प्रभु ने धरती को कभी नहीं जलाया। और यदि आप ध्यान दें और अंत के अध्याय में अंत के पद में उसने कहा और वह देखिए वह बातें कर रहा है पूर्व पिताओं के हृदय को बालकों की ओर फेरेगा और बालकों के हृदय पूर्व पिताओं की ओर फेरेगा। अब ध्यान दें पहला यूहन्ना आया, पहला एलिया उसने क्या किया, वह आया और एक संदेश को लाया और पुराने रूढ़िवादियों के कठोर हृदय को युवा कलीसिया के विश्वास की ओर बालकों की ओर फेरा। लेकिन जब अगला एलिया आया अंत समय में उसे वापस जाकर और उन पूर्व पिताओं के हृदय को लेना था, मेरा मतलब बच्चों के हृदय को, और पेंटिकॉस्टल पूर्व पिताओं की ओर वापस फेरना था। भिन्नता को देखा, वो यहाँ पर इनमें से नाम का कहलाने वाला नहीं होगा जो आज हमारे पास हैं, वह सीधे परिणतों के काम 2 पर वापस जाएगा और ठीक वहीं से आरंभ करेगा। वह शुद्ध सुसमाचार का प्रचार करेगा, ठीक उन्हीं बातों को कहेगा जो पतरस ने पेंटिकॉस्ट के दिन पर कही थी, क्योंकि जो उसने पेंटिकॉस्ट पर कहा वह बाकी के वचनों में से होते हुए प्रमाणित हुआ। जब एलिया आता है वह किसी संगठन के साथ समझौता करके नहीं चलेगा, वह स्त्रियों से घृणा करेगा जैसे एलिया ने किया, जैसे यानी बुरी स्त्रियों से जैसे यूहन्ना ने किया। वह एक जंगल प्रेमी होगा ठीक जैसे वे थे, वो छोड़ेगा नहीं, हम उसके आने की राह देख रहे हैं, वो आएगा। परमेश्वर ने कहा कि वो आएगा और वो यहाँ पर होगा। मैं विश्वास करता हूँ यदि कुछ भी वह संदेश जो आज हमारे पास है वह उसके महान आगमन के आगे आगे जाएगा। जी हाँ श्रीमान, वह अपने मार्ग पर है, जन्म ले चुका है, जैसे एलिया था और जंगल में ललकारता हुआ आता है, कहीं पर तो वह स्वयं को प्रकट करेगा। वह प्रेरितों के काम 2 को प्रचार करेगा, वह इन पुराने पेंटिकॉस्टल पूर्व पिताओं के विश्वास को वापस लौटा, इन पेंटिकॉस्टल बालकों का विश्वास ठीक पेंटिकॉस्टल पूर्व पिताओं के विश्वास की ओर वापस लौटाएगा। वह ठीक प्रेरितों के काम 2 पर वापस जाएगा। प्रेरितों के काम 2:38 सभी संदर्भ में वह वास्तविक शुद्ध सुसमाचार को लाएगा। उसका इजाबेल और उसकी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होगा, वह परमेश्वर का एक दास होगा, निश्चय ही वह होगा। बाइबल ने कहा वो आएगा, वह भविष्यवाणी करेगा और अपने संदेश को इन इजाबेलों के मुंह पर ललकारेगा, ठीक वैसे ही जैसे एलिया ने इसराइल के आरंभ में किया। वे उससे घृणा करेंगे, वे उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे, नहीं नहीं, वो आएगा। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है और वह दृश्य पर आएगा। वह चुनी हुई कलीसिया को वैसे ही प्रचार करेगा जैसे कहा गया है, उस चुने हुए को हिलाते हुए, उससे शारीरिक बातों को अलग करते हुए, वो संसार और उसकी चीजों को इसे हिलाते हुए, इसे शुद्ध करते हुए और कलीसिया को एक साथ एक लोगों के रूप में इकट्ठा करता है। मैं जानता हूँ कि आप कहते हैं यह मेरा संप्रदाय है। भाई आप गलत हैं। यूहन्ना एक मनुष्य की व्यवस्था के रूप में आया कि एक मनुष्य का परिचय कराए, यीशु मसीह। और एलिया कोई सिद्धांत नहीं होगा, ये मनुष्य होगा। यीशु ने ऐसा कहा है, यह एक मनुष्य होगा जो कि पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होगा। और वो तीन या चार ईश्वरों से परिचय नहीं कराएगा, वह एक का परिचय कराएगा, प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उसका संदेश पेंटिकॉस्टल बालकों को हिलाएगा कि पूर्व पिताओं के विश्वास की ओर फिर से वापस फेरे। भाई याद रखें, यदि मैं इन बातों को बुरा होने के लिए कहता हूँ तो मुझे वेदी पर होने की आवश्यकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहोवा यो कहता है, यदि परमेश्वर यह प्रमाणित न करे कि जो मैंने आपको बताया है वो सत्य है, समस्त राष्ट्र और समस्त संसार, तो फिर मुझे बताएं गलती कहाँ है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, परमेश्वर की ओर वापस आ जाओ, जल्दी से इन व्यवस्थाओं से बाहर आ जाओ, क्योंकि बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में कि रोमन कैथोलिक पुरोहितवाद एक वेश्या थी और वो एक वेश्याओं की माता थी। यह क्या है? कलीसियाएं, व्यवस्थाएं। और मेथोडिस्ट कलीसिया कहाँ से आई? लूथरन कलीसिया कहाँ से आई? मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और सारे संगठन कहाँ से आए? परमेश्वर ने एक कलीसिया को कभी भी संगठित नहीं किया। कैथोलिक कलीसिया ने कहा कि वे वहाँ पीछे थे, यीशु ने कलीसिया को संगठित किया। मैं इस बात के लिए इतिहास का एक पन्ना चाहता हूँ या बाइबल का एक पन्ना। 306 वर्षों तक कोई भी संगठन नहीं था। अंतिम प्रेरित की मृत्यु के पश्चात तब उन्होंने निसियन परिषद का गठन किया और एक संगठन बनाया। और जब लूथर बाहर आया, वह परमेश्वर का एक महान व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही वो चला गया, वह लोगों का छोटा झुंड आगे बढ़ा और एक और संगठन बना दिया। तब पवित्र आत्मा जॉन वेस्ली पर चला गया। उसने कभी भी कोई संगठन नहीं बनाया, लेकिन उसके जाने के बाद वे संगठित हो गए। तब पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्टलों के साथ हो गया और वे मेथोडिस्ट से बाहर निकल गए। और क्या हुआ? तब उन्होंने संगठित किया, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति की व्यवस्था होगी जो सामर्थ और एलिया के अभिषेक के साथ आगे आएगी ताकि भविष्यवाणी को पूरा करे। हालेलुया, वह इसे हिला देगा। और याद रखें, उसने उनसे भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी की और उन्हें सारी बातें बताई और परमेश्वर ने उसके साथ कार्य किया, लेकिन उसका अंतिम संदेश व्हाइट हाउस पर प्रहार करना था। जब यूहन्ना आया, उसका अंतिम संदेश उस दिन के व्हाइट हाउस पर प्रहार था। एलिया का अंतिम संदेश जब वो उस मार्ग पर उस सुबह को परमेश्वर की उपस्थिति से उठकर आने के बाद उस मार्ग पर से आ रहा था, सफेद बाल उसके सारे शरीर पर थे, उसका गंजा सिर चमक रहा था, गाड़ी हवा में लहरा रही थी, वे छोटी छोटी बूढ़ी आँखें परमेश्वर की महिमा से चमक रही थी, वह छड़ी उसके हाथ में थी और उसके पाँव पूरी तरह से स्थिर थे जितने हो सकते थे। वो क्या कर रहा था? सामरिया से चलते हुए व्हाइट हाउस के सामने जा रहा था और ये कहते हुए, यहोवा यो कहता है, कोई डर नहीं। कलीसियाओं ने उसे ठुकरा दिया था, लोगों ने उसे ठुकरा दिया था, सो अब उसने अपना अंतिम प्रहार व्हाइट हाउस पर किया। तब उसके बाद क्या हुआ? सुनना, प्रहार के पश्चात उसकी आवाज शांत हो गई, किसी ने भी उसे और नहीं सुना। परमेश्वर ने उसे दृश्य से वापस बुला लिया, कहा, एलिया तूने अपना संदेश सारे इसराइल पर प्रकट कर दिया है, वे इसे जानते हैं। अब यहाँ जंगल में आ जा, उनसे अलग हो जा, स्वयं को अलग कर, क्योंकि मैं कुछ तो करने जा रहा हूँ। मैं उन्हें यह दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे संदेश को ठुकरा देने से क्या होता है, क्या रखा है, युद्ध, अकाल, भुखमरी। पवित्र आत्मा यों कहता है, देखो क्या आ रहा है, देखो आगे क्या घटित होने जा रहा है। वहाँ अकाल था, वहाँ पर अकाल होगा। ओह, हो सकता है रोटी के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन और उसके सत्य को सुनने के लिए। सारी कलीसियाएं सामाजिक हो जाएंगी और ठीक उसी तरह से इसमें चली जाएंगी, ठीक जैसे कि वे लोग इसमें पहले ही निगले जा चुके हैं। एलिया ने क्या किया? उसे एक छिपा हुआ झरना मिला वहाँ दूर ऊपर पहाड़ों पर, जहाँ उसे कुछ जीवन का जल मिला, परमेश्वर की ओर से दिव्य प्रकाशन। जब वो वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य के नीचे बैठा हुआ था, प्रकाशन वह छोटे छिपे हुए झरने के समान था, जबकि बाकी के लोग अकाल में थे। और परमेश्वर अपने सेवकों को आशीषित करता है। वे कौवे वे उसके खाने के लिए कुछ तो लेकर आए। जब वह लोगों से अलग था और वे लोग एक बेदारी के लिए अकाल ग्रस्त थे और सब चल रहा था, उसकी बेदारी के विषय में और नहीं सुना। वह बूढ़ा संकी कहाँ गया जो यहाँ वहाँ जाकर और हमारे संगठनाओं पर जोर से फटकार लगाता है? वो अब कहाँ पर है? वे नहीं जानते थे। उसने अपने आप को परमेश्वर के साथ अलग कर लिया एकांत स्थान में, जहाँ वे लोग उसकी आवाज को नहीं सुन पाए। तब वे देखने लगे, जब परमेश्वर एक संदेश भेजता है और लोगों को बताता है और वे इसे स्वीकार नहीं करते, तब वो अपने सेवक को वापस बुला लेता है और अपनी पीड़ाओं को भेजता है। अकाल, मृत्यु, आत्मिक और शारीरिक रीति से भी बोल रहा हूँ। आप एक गिरावट को देखने वाले हो भाई, आप सोचते हैं आपने कुछ तो देखा है, आप बस कुछ देर और प्रतीक्षा करें, आपने कुछ भी नहीं देखा है। आप सोचते हैं आप एक अच्छे आत्मिक बेदारी के लिए तरस रहे हैं, आप थोड़ी देर होने तक और प्रतीक्षा करें। आप बस प्रतीक्षा करें, तरसोगे और रोओगे कि परमेश्वर का वचन सुन सको। बाइबल ने ऐसा कहा है, वहाँ अंत के दिनों में अकाल होगा, भविष्यवक्ता ने कहा, और केवल रोटी और पानी के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के सच्चे वचन को सुनने के लिए। लेकिन वो आवाज कहीं तो जंगल में शांत हो जाएगी, छिप जाती है। उसने कौओं को ठहराया, उसके सेवकों को, उन पक्षियों को आशीष मिले, उसके दास जो एलिया की आवाज को उसके कलीसिया से अलग एकांत में रहने के समय में जीवित रखते हैं। कौवे उसके लिए सुबह मांस और रोटी लाए और शाम को मांस और रोटी लेकर आए, और उसने छोटे झरने से पिया, जबकि बाकी सब वहां बिना किसी आत्मिक भोजन और पानी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब एक दिन पाप जब अपने पूरे जोर पर आ गया था और परमेश्वर अपने लोगों को उनके घुटनों पर ले आया, इजाबेल ने हर एक को हाथ में ले लिया, उसने सब मिटा दिया और वो इसे फिर से करेगी। यही है जो परमेश्वर की पवित्र बाइबल कहती है, वो इसे फिर से करेगी। वो ठीक अभी सिंहासन पर है, हाथ की कठपुतली के पीछे, वो इसे जैसा चाहती है घुमाती है। उसे कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, निश्चय ही उसे अब कोई भी रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जो वे धार्मिक दायरों में नहीं ले पाए, उन्होंने हटाकर इसे राजनीति में बदल दिया और वहीं पर उन्होंने यह कर दिखाया। उन्होंने बिल्कुल ठीक यही किया है, जो कि राजनीति एक बहिष्कार होगा, बिल्कुल ठीक वापस पशु की छाप की ओर उतना ही निश्चित है जितना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। देखिए, जैसा कि बाइबल ने कहा, मैं जानता हूँ कि हमें देर हो रही है, मैं जल्दी जल्दी करूँगा, मुझे इस अंतिम वचन को लेना है यदि प्रभु मुझे अनुमति दे। ध्यान दें, एलिया वहाँ तब तक बना रहा जब तक कि परमेश्वर ने उसे वहाँ से नहीं हटाया। उसके पास कोई भी बेदारी नहीं थी, उसने किसी के विरोध में प्रचार नहीं किया, वो बस वहाँ परमेश्वर के साथ अकेला खड़ा रहा वहाँ जंगल में, क्योंकि वो एक जंगल का मनुष्य था। वह जंगल में ही पला बड़ा था, जैसे कि यूहन्ना जंगल में पला बड़ा था। वह जंगल में अकेला ही परमेश्वर के पास गया, कलीसिया से हटाया गया। जब उसने अपने संदेश को दिया और कलीसिया ने इसे ठुकरा दिया और अंत में संगठन कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए उसे बस वहाँ से बाहर जाना ही था। परमेश्वर ने उसे दृश्य से बुला लिया, उसे वहाँ उस जंगल में ले गया, कहा यहाँ पर आ जा, वे अब और नहीं सुनेंगे, आ जा, अब मैं अपने न्याय को उन पर भेजूंगा। ओह हाँ, वह इन दिनों में से किसी एक दिन यहाँ पर होगा, आप देखना। तब उसकी भविष्यवाणी के दिनों के बाद क्या घटित हुआ? कलीसिया मुरझाने लगी, इजाबेल का बड़ा आतंक, उसने सब अपने बस में कर लिया, उन सबको निगल गई, उन्हें अपने अधिकार में कर लिया और उपवन और बाकी की हर एक चीज बनाई। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसे फिर से बाहर बुलाया, यहाँ वो निकल कर आया। अब ध्यान से सुनना और मुझ पर नाराज मत होना, मैं कह रहा हूँ, यहोवा यो कहता है, जब वो बाहर आया, परमेश्वर ने क्या किया? उसने उसे एक विधवा स्त्री के घर भेजा। एक समय था जब वो एक पुरुष के अधीन थी, लेकिन उसे आजाद करने के लिए मृत्यु आई, जिससे वह भविष्यवक्ता के वचन पर विश्वास कर सके। आपने यह ध्यान दिया, उसका एक पति था जिसने उसे इस तरह से और उस तरह से मार्गदर्शन किया वहाँ एक विद्यालय में, लेकिन इस बड़े अकाल के चलते उसे निगल लिया गया, मृत्यु ने उसे ले लिया। अब वो किसी भी संगठन से नहीं जुड़ी थी, इसलिए वो अब प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार थी। एक स्त्री का अर्थ होता है एक कलीसिया, एक विधवा। उसका पति संगठन मर गया था और वह केवल इतना ही सोच पा रही थी कि वो अभी जीवित है, और परमेश्वर ने कहा अब उसके पास जा, वो स्त्री तेरी सुनेगी, मैंने उसे आज्ञा दी है। ओह, कभी कभी हम सोचते हैं आप जो वहाँ छोटा सा झुंड हैं, जो कि इतने विश्वास योग्य हैं और एक सभा को करने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, यह दर्शाने का प्रयास करने के लिए कि आपका हृदय सच्चा है और आप चाहते हैं वे भी सही हो जाएं। आप सोचते हैं कि आपका कठिन समय है, लेकिन याद रखें परमेश्वर की आंखें आप पर हैं। आप उससे प्रेम करते हैं, मैं जानता हूं कि आप उससे प्रेम करते हैं, नहीं तो आप यहां पर नहीं बैठे होते, आप ऐसी किसी भी चीज के लिए उपस्थित नहीं होते। परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर है। जी हाँ, और जब वो वहाँ गया, उसका पति मर गया था, उसका संगठन मर गया, इसलिए अब वो भविष्यवक्ता के वचन को सुनने के लिए तैयार है। इसलिए जब भविष्यवक्ता फाटक पर आया और उससे जरा सा पानी मांगा, वो इसे लेने को गई, तब उसने कहा मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा ले आ, और वह घूमी और बोली जैसे प्रभु जीवित है मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा ही बचा है। अब यह ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इसलिए भेजा गया था कि उसके पास जो थोड़ा सा है उसे ले ले, लेकिन यह उल्टा था, जबकि वह इस बात की इच्छा रखती थी कि उसके पास जो है वचन के समर्थन के लिए दे दे। परमेश्वर ने उसे खिलाया। और यदि आप चाहते हैं कि जो आत्मा आपके पास है उसे दे दें, जो आत्मा परमेश्वर ने आपको वचन के समर्थन के लिए दी है, तो परमेश्वर आपको जीवित रखेगा। हालेलुया, ओह परमेश्वर की महिमा हो। क्या आप इसे देखते हैं कलीसिया? यह मत सोचिए कि मैं अपने आप से बाहर हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन आपके पास जो है, आप कितना छोटा परमेश्वर में विश्वास करते हैं, आपके पास कितना भरोसा है, इसे वचन पर रखिए, ना कि संगठन पर, इसे परमेश्वर के वचन में रखिए, वो आपको जीवित रखेगा। तब वो तैयार थी, क्योंकि इसके पहले वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वे उसे नहीं करने देते, लेकिन अब वो तैयार है। क्या वो उसे स्वीकार करेगी? परमेश्वर ने उसके मार्ग में एक भविष्यवक्ता को भेजा, क्या वह उसका वचन स्वीकार करेगी? क्या वह इस भविष्यवक्ता को स्वीकार करेगी? हाँ, उसने किया, और उसने उसे बताया, कहा अब जो भी छोटा जीवन तेरे पास है उसे यहाँ रख दे, उसे पहले मेरे पास ले आ। और क्या हुआ, जबकि बाकी संसार दुख में जीवन बिता रहा था और भूख से मर रहा था, वो और उसके बच्चे और उसका घराना दिन में 3 बार अच्छा खाना खाते। वचन पर दिव्य प्रकाशन का मित्र, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे देख रहे हैं। क्या हुआ, वो वहाँ तब तक रुका रहा जब तक अकाल समाप्त नहीं हो गया। इस स्त्री के साथ रहते हुए इस कलीसिया जिसने उसे स्वीकार किया और उसके वचन का विश्वास किया, और उसने उस महिला को जीवित रखा, कलीसिया को जीवित रखा प्रभु के वचन के द्वारा, क्योंकि उसने कहा यहोवा योग कहता है। अब हमारे पास बाकी की कहानी को लेने का समय नहीं है। आप जानते हैं कैसे उसे बाल के पास शक्ति प्रदर्शन के लिए आना था, वो इसे करेगा इन दिनों में से किसी दिन। आप चिंता न करें, जब वो जंगल में से पैर पटकता हुआ बाहर आया, आप ध्यान दें कि क्या बात ने जगह ली, क्या घटित हुआ। जब वो भला बूढ़ा एलिया, वो भविष्यवक्ता, परमेश्वर का एक सच्चा सेवक अपने मार्ग के अंत में आया, परमेश्वर ने उसे बताया, एक दिन कहा एलिया तूने काफी लंबे समय तक प्रचार किया है, तू इजाबेल से लड़ा और उसके सारे चेहरे को रंगने और हर एक चीज, इतना तक तूने बहुतायत से किया, कहा यहाँ यर्दन पर आ जा। और यहाँ पर वो जाता है, नीचे यर्दन पर जाता है, वहाँ उस ओर पुरानी सी दलदली धारा नीचे आ रही है, ठंडा बर्फ का पानी, जैसे कि हर एक मनुष्य को सामना करना है यर्दन मृत्यु का। लेकिन जब परमेश्वर का यह महान सेवक यर्दन पर चलकर गया और उसका पुत्र साथ चल रहा था, सुसमाचार का पुत्र, ओह हाँ वह उसका पुत्र था, मेरे पिता इज़राइल के रथ और उसके घुड़सवारों, जब वो और उसका पिता हाथ में हाथ डाले यर्दन तक चलकर गए, वो अपने पिता को देख रहा था जो उस सुबह छोड़कर जा रहा था। जब वो नीचे यर्दन पर पहुंचा, उसने आगे बढ़कर अपने कंधों पर से सामर्थ के वस्त्र को उतारा, कहा, मृत्यु तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, और उसने यर्दन पर मारा, हट जा, इस सुबह मैं पार कर रहा हूँ। क्या हुआ, वह पीछे हट गई और पाउडर के समान सूख गई। बूढ़ा भविष्यवक्ता क्या कर रहा था, वह यर्दन के उस पार देख रहा था। वो जानता था कि एक रथ घोड़ों के साथ वहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो घर जा रहा है। उसका काम पूरा हो गया था, सुसमाचार में उसका पुत्र उसका स्थान ले रहा था। उस दिन पश्चिम से मैं घर आ रहा था, यह मेरे मन में आया। मैंने रेडियो चलाया, मुझे 3 दिन कार को चलाना था, 2400 मील, केवल मुझे ही। मैंने रेडियो चलाया और मैं डेल रियो टेक्सास से आत्मिक चीजों को सुन रहा था। वहाँ एक व्यक्ति था जो बूढ़े काले निग्रो के विषय में बात कर रहा था। वो मरने पर था और उसे नदी के किनारे आना था। उसने कहा, वह सोने की चप्पलें जो मैं पहनने जा रहा हूँ ताकि सोने की सड़कों पर चलूं। इस बूढ़े निग्रो ने अपने सारे जीवन में प्रचार किया था और केवल एक चीज जो वो सोच सकता था वो थी दिलासा या शांति जो उसके पास थी, जो उसका पुराना बेंजो या बजाने का उपकरण था यह दीवार पर लटका हुआ था। उसने कपास के गट्ठों पर बैठकर और उसने स्तुति के गीतों को बजाया, अपने आप को अपनी सेवकाई से विश्राम दिया उस पुराने बेंजो के साथ। उसके पास विश्राम करने का यही तरीका था। उसने कहा, वह बूढ़ा कटी हुई पूंछ का घोड़ा जिसे वह चलाया करता था वहाँ उस रथ के साथ होगा। मैं उनके विषय में सोच रहा था। उसने कहा, वे सोने की चप्पलें जो मैं पहनने जा रहा हूँ कि सोने के रास्तों पर चलूं। और जब वो गीत को गा चुका, मैंने रेडियो बंद कर दिया और कार की स्टीयरिंग को पकड़े हुए वहाँ जा रहा था। ओह, ये सही है, मुझे भी वहाँ पर जाना है। मुझे कौन सी चीज से कभी दिलासा या शांति मिलेगी? मैं जंगल में कहाँ पर दिलासा पाऊंगा? मेरे पास एक छोटी पुरानी सी बंदूक थी जिसे कहते हैं मैं वर्ष के पतझड़ में इससे शिकार करता हूँ। यह एक 270 मॉडल 721 रेमिंगटन की बंदूक है। एक व्यक्ति भाई ने वर्षों पहले मुझे कैलिफोर्निया में इसे दिया था। मैंने उस बंदूक से वर्षों और वर्षों तक शिकार किया है। यह क्या ही एक दिलासा यह शांति थी, क्योंकि मैं जानता हूँ यह अच्छी गोली चलाने वाली बंदूक है। जंगल में यह मेरा दिलासा या शांति है। तब मैंने अपने दर्शन के विषय में सोचा। जब मैं वहाँ पहुँचा और अपने सारे लोगों को देखा, मैंने किसी चीज को हिनहिनाते सुना और मेरा छोटा प्रिंस आता है, मेरा छोटा काठी वाला घोड़ा, और अपने सिर को मेरे कंधे पर रखा। मैंने सोचा, जी हाँ, इन्हीं में से किसी एक सुबह मैं भी यर्दन की ओर आ रहा हूँ, और वो पुरानी 270 बंदूक जिसे मैं प्रयोग करता था दीवार पर लटकी हुई है। मैंने इसे पिछले पतझड़ के बाद से लेकर नहीं लिया है। वह छोटा काठी वाला घोड़ा जिस पर मैं सवारी किया करता था, परमेश्वर उसे मेरे रथ में जोड़ देगा। उस सुबह को जब मैं वहाँ नीचे नदी पर पहुँचता हूँ, यह वहाँ तब नदी के पार खड़ा हुआ होगा, परमेश्वर उसे भेजेगा। मैंने एक रात को उसे देखा था, वह उसे किसी एक सुबह को मेरे रथ में जोड़ देगा। मैं चला जाऊंगा बादलों में से होकर ऊपर चढ़ते हुए। आइए हम प्रार्थना करें। ओह, परमेश्वर की उस सामर्थ को जिसका मैं आनंद लेने जा रहा हूँ जब मैं उन सोने के रास्तों पर चलूंगा। हाँ, वहाँ वह पुरानी बंदूक जो अब दीवार पर लटकी हुई है, तब उसका कोई उपयोग नहीं होगा। मैं सोचता हूँ यदि मेरा रथ आता है, यदि मेरा छोटे काठी वाला घोड़ा जिसे मैंने एक दर्शन में देखा है मेरे रथ में जुड़ा होगा, उस सुबह वहाँ नीचे उस नदी पर खड़ा होगा। मुझे आशा है वो खड़ा होगा। मैं उठाया जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कलीसिया भी ऐसे ही उठाई जाए। मैं आप में से प्रत्येक को चाहता हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कब यर्दन के पास आ रहे हैं? क्या आप इस संसार की इन अधर्मी व्यवस्थाओं को छोड़ देंगे और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे? यदि आप एक मसीही नहीं हैं, तो क्या आप अपना हाथ उठाकर और कहेंगे, भाई ब्रैनम, मेरे लिए प्रार्थना करें, जब मैं यर्दन के पास आता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, जब मैं यर्दन के पास आता हूँ। मैं अपने ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ को चाहता हूँ और उस ठंडे पानी पर आकर और चलकर पार जाऊँ। आप भला कैसे ऐसी बातों के बोलने के पवित्र आत्मा के अभिषेक के नीचे बैठ सकते हैं और यह जानते हुए कि पवित्र आत्मा मुझे आपकी स्थिति बताता है और आप हाथ उठाने में असमर्थ हैं? यह ये दर्शाता है कि यह समय जंगल की यात्रा का है। इससे पहले हम प्रार्थना करें, क्या कोई एक होगा? एक और, वहाँ दो लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं, तीन ने। परमेश्वर आपको आशीष दे पुत्र। हमारे स्वर्गीय पिता, तीन। प्रभु, यह अद्भुत होगा यदि वे उस दिन बस वहाँ पर होते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे होंगे प्रभु। उन्होंने अपने हाथ उठाए हैं क्योंकि वे इस बात को मान गए हैं कि यह संसारिक सिद्धांत मर रहे हैं और परमेश्वर के वचन की आवाजें जल्द ही इसे पाना कठिन चीज हो जाएगी। परमेश्वर इसे कलीसिया से ले लेगा। वो चिल्लाहट, दूल्हे की पुकार जल्द ही चली जाएगी और इजाबेल का तंत्र इसे दबा देगा। लेकिन वे चाहते हैं छिपे हुए झरने के द्वारा जिए, जैसे एलिया अकाल के समय में से होते हुए संरक्षित किया जाना था। परमेश्वर, अब उन्हें पवित्र आत्मा दें, इनके हृदय को आनंद और शांति से भर दें और इनके मनों को परमेश्वर के वचन पर रखें। वे अभी और इसके बाद हमेशा के लिए जी सकें। इन्हें आशीषित करें पिता। यीशु मसीह हमारे प्रभु के द्वारा, वे आपके हैं। हमारे झुके हुए सिरों के साथ, वे जिन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठाया है और मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं, क्या आप अपने पैरों पर खड़े होंगे बस कुछ क्षण के लिए, जबकि मैं आप लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता हूँ। केवल अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हे परमेश्वर, क्या मैं असफल हो गया हूँ? यहाँ तक कि तीन लोग जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है, पर उनमें इतना भी दृढ़ विश्वास नहीं था कि वे खड़े होकर उसी बात को स्वीकार करें जो उन्होंने किया था। प्रभु यीशु, मैं ये सब आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैंने आपके वचन को प्रचार किया है और कोई समझौता नहीं किया है। अब पिता, मैं इनके लिए घर को छोड़ता हूँ। आप वही करें जो भी कलीसिया और आपके सेवक दोनों के लिए उपयुक्त हो। ये सब आपके हाथों में है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप खोए हुओं को बचाएंगे, भूखे हृदय को भली वस्तुओं से तृप्त कर दें, जो प्यासे हैं उन्हें अनंत जीवन देना, संदेश की प्रशंसा के लिए अपने दासों को उठाया है, बीमारों और पीड़ितों को चंगाई देना, और आप अपने निमित्त महिमा को पाएं, क्योंकि मैं स्वयं को आपके वचन के साथ समर्पित करता हूँ। और मेरे हाथ में और मेरे हृदय में और मेरे मन में अपनी व्यवस्था को यीशु मसीह हमारे प्रभु के द्वारा लिखें। आमीन। मैं उस गीत को नहीं गाना चाहूंगा बिल, तुमने प्रार्थना कार्ड बांट दिए। मुझे भारी सा अनुभव हो रहा है। आज तुमने कौन सा दिया है? बी। तुमने ए भी दिया है क्या? तुमने नहीं दिया, ठीक है। बी वालों को पहले बुलाते हैं। एक से प्रार्थना कार्ड बी, नंबर एक। हम आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। बी नंबर एक, ये किसके पास है? प्रार्थना कार्ड बी नंबर एक, कोई तो वहाँ पीछे। महिला, यहाँ आ जाएं। बी नंबर दो, अपना हाथ उठाएं। वो महिला नंबर तीन। बी नंबर तीन, कृपया अपना हाथ उठाएंगे जिससे कि मैं देख सकूं कहाँ है। तीन नंबर चार, बी नंबर चार, बी नंबर पाँच, क्या कृपा करके अपना हाथ उठाएंगे? बी नंबर पाँच, वो व्यक्ति, तो ठीक है। छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, अच्छा, यहाँ सारे बी यहाँ पर खड़े हो जाएं, जो भी हैं, बस। वो सारे संसार में चले गए, कार्य क्षेत्र में, हर एक मिशनरी, जहाँ भी वे जा सकते हैं। सारे बी प्रार्थना कार्ड के खड़े हो जाएं और अपने नंबरों के अनुसार अपना स्थान ले लें। अब अगला कौन सा है? ए, किसके पास प्रार्थना कार्ड ए एक है? ए एक, यह कहाँ पर है? निश्चय ही यहाँ पर है। ए एक, वे कार्ड दो दिनों से दिए गए हैं या तीन दिन से, अब इसलिए हो सकता है वे यहाँ नहीं हो। सब प्रार्थना कार्ड ए के साथ अब आप लोग यहाँ पंक्ति बना लें, वहाँ सीधे दीवार से लगकर जाएं आदर भाव से। मैं आप बिना प्रार्थना कार्ड वालों से बात करना चाहता हूँ इससे पहले कि पंक्ति को आरंभ करें। बस एक मिनट। अब अपने प्रार्थना कार्ड के साथ इसे अपने हाथों में पकड़े रहें ताकि लड़के आपके प्रार्थना कार्ड को ले सकें। आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, आप लोग शाम को जल्दी आए जिससे कि अपने प्रार्थना कार्ड को ले सकें और पंक्ति में आने का अधिकार है। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अब मैं अपने वादे को पूरा करने का यत्न करूंगा। परमेश्वर मेरी सहायता करे। ये आपका छोटा लड़का है, बहुत ही प्यारा छोटा व्यक्ति। कृपया मुझे क्षमा करें, ये महिला यहाँ एक भली प्रकार की सच्ची अमेरिकन है। उसका छोटा लड़का छोटा सा चोगा और धारी वाली जैकेट पहने हुए है। युवा महिला लंबे बालों के साथ अच्छी वेशभूषा पहने हुए है। परमेश्वर उसे और उसके घराने को आशीष दे और उसके पति को और उसके प्रियजनों को। यह सच्ची मूल संयुक्त राज्य अमेरिकन है जिसके ऊपर मसीहत लिखा हुआ है। लंबे समय तक होने पाए हमारा राष्ट्र ऐसा ही बना रहे। छोटी महिला, मुझे ऐसा कहने के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं बस ताकि लोग जान सकें कि मेरे विचार में एक मसीही का रूप कैसा होता है। कोई साज सज्जा नहीं जो चीजें वे लगाती हैं, बस एक सादगी से भरी स्त्री। भाई सुलीवन, परमेश्वर आपको आशीष दे। वो महान वैद्य, यदि आप चाहें। क्या आप उसमें विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो महान वैद्य है? अब बस एक क्षण भक्ति भाव में रहें। हमारे पास अभी थोड़ा समय है। मैंने संदेश को थोड़ा छोटा किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए हैं कि मेरा क्या अर्थ है। बस अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। जब वे सब पंक्ति में आ जाते हैं तो कोई वहाँ पीछे लोगों को पंक्तिबद्ध करने के लिए होता है, ठीक है? क्या कहते हैं? अब सब जिनके पास प्रार्थना कार्ड है खड़े हैं। क्या आप भी विश्वास करते हैं बिना प्रार्थना कार्ड वाले? यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको पुकारेगा। अब सारे प्रार्थना कार्ड वाले पंक्ति में हैं। छोटी लड़की वहाँ पीछे खड़ा पैर के साथ बैठी है यहाँ उस पर। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर इसे चंगा कर देगा? यदि आप करती हैं तो बस विश्वास करें और परमेश्वर इसे आपके लिए प्रदान करेगा। सोचती हैं कि आपके बीमार पिता ठीक हो जाएंगे? आप विश्वास करती हैं आपके पास ये हो सकता है। वहाँ आपके विषय में क्या है? अपने भतीजे के लिए प्रार्थना कर रही हैं जो अधीरता की स्थिति में है। आप सोचती हैं कि परमेश्वर उसे चंगा कर देगा? महिला जो वहाँ बाहर बैठी हैं, यदि आप इसका विश्वास करें तो आपके पास ये हो सकता है। आप सभी जन विश्वास करेंगे। अब मैं चाहता हूँ मेरे कितने भाई लोग यहाँ पर हैं, सुसमाचार प्रचारक, पूर्ण सुसमाचार प्रचारक या वे जो भी हैं, जो दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं, अपने हाथों को उठाएं। मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आकर लोगों के लिए प्रार्थना करने में मेरी सहायता करें, ताकि लोग देख सकें कि यह केवल मैं ही नहीं हूँ जो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। यहाँ आएं और मेरे साथ मंच पर खड़े हो जाएं। क्या आप आएंगे भाइयों? आप सेवकगण सीधे यहाँ आकर और ठीक साथ में मंच पर खड़े हो जाएं, यह अच्छा है। धन्यवाद भाइयों, आपका धन्यवाद। सीधे आगे आ जाएं, भाइयों आइए। क्या कहा? हाँ आप कर सकते हैं, ठीक यहाँ दो पंक्तियाँ बना लें, यह अच्छा रहेगा, यह अच्छा है। अब इसे दूसरी ओर घुमा दे भाई, इस ओर घुमा दे। मैं लोगों को सीधा इधर यहाँ से लाना चाह रहा हूँ। अब आप में से कुछ लोग मेरे इस ओर आ जाएं, ठीक यहाँ, यदि आप चाहें तो इस ओर खड़े हो जाएं, यही है। अब श्रोतागण, आप इन भले मनुष्यों को देख रहे हैं, ये लोग जो ठीक यहाँ ऊपर खड़े होंगे और इसी सुसमाचार के लिए जो प्रचार कर रहा हूँ, समझे, वे यहाँ आ रहे हैं क्योंकि वे इसमें विश्वास करते हैं। अब आपको अपने पास्टर पर गर्व होना चाहिए जो स्वयं को यहाँ मंच पर दिखाएगा कड़क जोरदार प्रचार के लिए। ये वे लोग हैं जिनके पास एक प्रकाशन है जो ये जानता है मैं लोगों के विरोध में नहीं हूँ। कभी कभी हम सिद्धांतों में फंस जाते हैं जो कि हमें ऐसा बना देते हैं। वे तो सिद्धांत हैं जिनके हम विरोध में हैं, ना कि मनुष्य के जो परमेश्वर का सेवक है। अब यदि हमारे पास यहाँ प्रत्येक को परखने के लिए होता है तो आप क्या सोचते हैं मैं कितनी देर यहाँ पर रह पाऊंगा? मैं मूर्छित हो जाऊंगा जब मैं लगभग 6, 5 या 6, 10 लोगों के बाद, थोड़े और हो सकता है आधे, 1/4 लोगों के बाद मैं नहीं कर पाऊंगा। बाकी के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं हो पाएगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। और जैसा कि यह, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप जानते हैं आपकी परेशानी क्या है, आप जानते हैं कि आपने क्या किया है। अब अपने पापों को स्वीकार कर लें। यदि आप में से कोई यहाँ है जिसके हृदय में जरा सा संदेह भी है, उसे अभी निकाल दें और परमेश्वर से कहें कि आपको क्षमा कर दे। यदि आप परमेश्वर के साथ सही नहीं हैं, परमेश्वर से कहें कि आपको क्षमा करे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप परमेश्वर के साथ सही नहीं हैं, तो आपके लिए यहाँ पर आना जरा भी भला नहीं करेगा। आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, यह सत्य है। अब भाइयों, क्या यह सही बात है? यह सही है। इधर देखिए, यहाँ पर भाई किड खड़े हैं। मैं लगभग 2 वर्ष पहले उन तक पहुँचने के लिए अपने कार के टायर को फाड़ने के लिए तैयार था, ताकि वे कैंसर से मर रहे थे। उस दिन वे मरने वाले थे। उसकी पत्नी ने मुझसे कहा, जल्दी करिए, कहा वो अब मर रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया और यहाँ वह अब भी खड़े हैं। और मैं सोचता हूँ उनका वजन भी बहुत बढ़ गया है और हर एक चीज, पहले के एक बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति, आप जानते हैं वो इस प्रकार का मनुष्य था जिसके विषय में मैं वर्षों पहले बात कर रहा था, जिसने प्रचार किया और ठीक इस वचन पर ही टिका रहता और लोग उस पर हंसते। और वो और उसकी पत्नी रेल की पटरियों पर चलकर जाते और अन्य सभी चीजों को किया और दूर ऊपर पहाड़ों की चोटी पर गए और कोयले की खदानों और बाहर निकाला गया और जेल में डाला गया और हर एक चीज को किया। यही वो मनुष्य है जो इनाम जीतने के लिए लड़ा, वो इस प्रकार का है। अब भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ, संभव है आपके पास परखने की आत्मा ना हो। इसका होना जरूरी नहीं है, देखो यह आवश्यक नहीं है। पहली चीज, आप वचन के पक्के व्यक्ति हैं। आप मुझसे कहीं अधिक अच्छे प्रचारक हो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन आप अभिषिक्त हैं। कोई भी मनुष्य जिसे सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया गया है, बीमारों को चंगा करने के लिए बुलाया है, सबके लिए आज्ञा ये है, सारे संसार में जाओ और हर एक सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। वह जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है बच जाएगा। जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे इत्यादि, वे चंगे हो जाएंगे। यदि आपको सेवकाई के लिए बुलाया गया है, तो आपको बीमारों के लिए प्रार्थना करने को बुलाया गया है। और कारण जो मैं ऐसा कहता हूँ, जिससे ये श्रोतागण, ताकि वे देख सकें कि उन्हें किसी विशेष व्यक्ति के लिए रुके नहीं रहना है। ओरल रॉबर्ट्स, टॉमी हिक्स, टॉमी ऑसबॉर्न, मैं खुद, कोई तो जो चंगाई की सभा के लिए आता है। मैं चाहता हूँ कि वे देखें कि आप परमेश्वर के जन हैं, समझे, आप एक मनुष्य हैं, आपको वैसे ही किसी पर भी हाथ रखने का अधिकार है। जैसे मेरा या किसी का भी है। आखिरकार भाइयों, आप सब जानते हैं, सेवकों के रूप में यह परमेश्वर में उनका अपना विश्वास है जो काम को करता है। क्या यह सही है? हम केवल उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अब आप कहते हैं, भाई ब्रहणम, क्या वो पवित्र आत्मा का आत्मा वहाँ आपके साथ है? निश्चय ही, जी हाँ श्रीमान। अब आपके लिए वहाँ पंक्ति में, यदि आप संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, अपना हाथ उठाएं, कहें मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अब यहाँ आएं, यह महिला यहाँ पर आए, मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपको कभी नहीं देखा। यदि पवित्र आत्मा मुझे बताएगा, इसी प्रकार मेरे भाई लोग जो यहाँ हैं, इस प्रकार की उपस्थिति में, इसलिए ये सारे यहाँ मेरे आसपास खड़े हुए हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे भाई लोग यहाँ पर हैं और मेरा प्रभु यहाँ पर है, यह उनका भी प्रभु है। अब यदि वह मुझे यह बताए कि आपके साथ कुछ तो गलत है, आपके साथ जो कुछ भी गलत है, आप जान जाएंगे कि यह सत्य है या नहीं। मैं उन्हें चाहता हूँ, मैं श्रोतागण को चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग देखें कि पवित्र आत्मा यहाँ मंच पर है, ये आत्मा की परख को देता है, लेकिन यह किसी को भी चंगा नहीं करता। लेकिन यदि वह मुझे आपके विषय में कुछ तो बताए, जो कि आप जानते हैं कि मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, जैसे कि वह स्त्री जो कुएं पर थी, यह उस प्रकार का मामला नहीं है, लेकिन मेरा अर्थ एक पुरुष और महिला पहली बार मिल रहे हैं। यीशु एक प्रकार का मध्य आयु का मनुष्य था और ये स्त्री शायद एक युवा स्त्री थी, हो सकता है आपके जैसी। और यदि वह ऐसा करेगा, मुझे बता सकता है कि आप यहाँ किसके लिए हैं, आपकी परेशानी क्या है, क्या आप विश्वास करेंगी कि यह उसी का ही आत्मा होगा जो यह करेगा? भाइयों, क्या आप यह विश्वास करेंगे कि वही प्रभु यीशु यहाँ पर खड़ा हुआ है? आप श्रोतागण इसी बात को विश्वास करते हैं? क्या आप जो प्रार्थना पंक्ति में हैं, इसी बात का विश्वास करते हैं और जानते हैं कि यह मनुष्य, क्या मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं? यदि मैं सोचता हूँ कि वे नहीं, इस तरह से प्रचार करने के बाद और जो बातें मैंने कही हैं, और फिर उन लोगों को यहाँ बुलाऊं जो अयोग्य हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उसी चीज को परास्त कर दूंगा जिसके लिए मैं लड़ रहा था, समझे? मैं उनमें विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि ये लोग परमेश्वर के जन हैं। अब देखिए, यदि पवित्र आत्मा नजदीक खड़ा होता है, केवल आपसे बात करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप कहते हैं आप क्या कर रहे हैं भाई ब्रैनम? वही चीज जो यीशु ने उस स्त्री के साथ किया, कहा मुझे पीने को पानी दे। वो केवल उस स्त्री से एक मिनट बात करने की कोशिश कर रहा था, पता लगाने के लिए उसकी परेशानी क्या थी। आपकी समस्या घबराहट है, यही है जो आप सफर कर रही हैं। यदि यह सही है तो अपना हाथ उठाएं। अब भाइयों, वो सच में ऐसी नहीं दिखती। क्या वो ऐसी दिखती है? वो नहीं दिखती, लेकिन यही उसकी समस्या है। वह लंबे समय से ऐसी ही स्थिति में है, हमेशा पहले से ही सोचकर चिंता करना और ऐसी ही इत्यादि बातें। यह सही है, यही आपका स्वभाव है, आप इसी तरह से हो, घबराहट भरे, हमेशा ही कल्पना करती हैं कि कुछ तो घटित होने को है। ऐसा नहीं होता, कभी कभी शैतान आपको बताता है इसमें कुछ भी नहीं है, बस तुम पिछड़ गई हो, तुमने वो रेखा पार कर दी है। मैं आपके मस्तिष्क को नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ जो मैं ये जान रहा हूँ कि उसने आपसे क्या बात की है, क्योंकि मैं देखता हूँ आपके मन में क्या है। अब यीशु ने उनके विचारों को जान लिया, क्या यह ठीक है? अच्छा, यही है जो ठीक अभी घटित हुआ है, क्या यह सही है? यहाँ मुझे आपको कुछ तो बताने दो ताकि आप जान सकें, यहाँ आप वास्तव में किसी और के लिए खड़ी हैं। यह सही बात है, यही बात है। आप देखिए, आप इसे तब तक नहीं पकड़ सकते। अब यदि प्रभु मुझ पर प्रकट करेगा कि आप यहाँ किस लिए खड़ी हैं, किसी और के लिए, तो क्या मेरा विश्वास करेंगी कि मैं उसका भविष्यता हूँ? यह आपकी माँ के लिए है, आप विश्वास करती हैं परमेश्वर मुझे बता सकता है कि उसकी परेशानी क्या है? तो ठीक है, उन्हें हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप, पित्त में पथरी, जटिलताएं हैं, यह सही बात है, क्या ऐसा नहीं है? समझे, अब यह पवित्र आत्मा है, क्या नहीं है? अब यहाँ मुझ पर कुछ तो है और इन भाइयों पर, समझे, अब यहाँ कुछ तो है पवित्र आत्मा। अब आप विश्वास करते हैं? आप जैसे कि हम पंक्ति से होकर गुजरते हैं, आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं जब हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अब स्वर्गीय पिता, हम अपने हाथ इन लोगों पर रखने जा रहे हैं और अब मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यहाँ आपके शाही सेवक खड़े हुए हैं और हम सब बीमारों पर हाथ रखने जा रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा करने को कहा है। हम इसे यीशु मसीह के नाम में करने जा रहे हैं। होने पाए लोग केवल यहाँ से ऐसे ही बाहर न निकलें, लेकिन होने पाए वे यीशु मसीह के नाम में चंगे होते हुए निकलें। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अब नजदीक से होकर चलें। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हों, प्रभु यीशु के नाम में मेरे भाई को चंगा करें। प्रभु यीशु के नाम में मेरी बहन को चंगा करें। अब बस एक मिनट, देखिए भाई और बहनों, क्यों यह आपका आनंद है जब वो महिला, जब विचारों को परखना घटित हुआ और जब दूसरे लोग आकर निकले तो कुछ भी नहीं हुआ। लोग पंक्ति से होकर निकलते हैं तो यदि मेरा विचारों को परखना नहीं होता है तो फिर मुझे कोई चंगाई नहीं मिली, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ उसी तरह से है, समझे। जब आप यहाँ से निकलते हैं तो अपने हाथों को ऊपर करके आएं, कहते हुए धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपको अपना चंगा करता स्वीकार करता हूँ और मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। इनमें से एक व्यक्ति मुझे बपतिस्मा देने जा रहा है, मैं सीधा पानी के तालाब में जा रहा हूँ और बपतिस्मा को लूंगा और बाहर निकलकर और जानते हुए कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं पवित्र आत्मा को पाऊंगा। देखिए, यह विचारों को परखना अब भी यहाँ पर है, यह यहाँ अब भी उसी तरह से है। यहाँ ये कौन है, ये व्यक्ति जो यहाँ है? मैं आपके लिए अपरिचित हूँ। क्या मैं हूँ श्रीमान? मैं आपको नहीं जानता। क्या यदि परमेश्वर मुझे बताएगा कि आपकी परेशानी क्या है तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे कि मैं उसका भविष्यवक्ता हूँ, उसका सेवक आप अपने पूरे हृदय से करेंगे? तो ठीक है श्रीमान, धन्यवाद श्रीमान, यह एक बहुत ही अच्छी आत्मा है, एक बहुत ही अच्छी चीज है। इस सब के बाद आप यहाँ किसी और के लिए खड़े हैं, यह सही बात है। यह आपका पोता है जिसे पोलियो है, उस दिन गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। यह यहोवा यो कहता है वाला वचन है, क्या यह सही बात है? यह सही है, जाएं और अब विश्वास करें और वह चंगा हो जाएगा। अब हर कोई विश्वास करता हुआ आए, बस आ जाए। हम वहाँ पर खड़े हैं, परमेश्वर के छोटे अपाहिज बच्चे, अंधे, विकृत, सुसमाचार के सेवकों। आप जानते हैं हमारे पास चंगा करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमारा महान प्रभु यीशु मसीह इन चिन्हों को भेज रहा है और शैतान को निकम्मा ठहराता है जिसने आपको बांध रखा है। हम शैतान को निकम्मा ठहराते हैं, हम अंधेपन को निकम्मा ठहराते हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं कि परमेश्वर उन्हें विश्वास के लिए भरोसा देगा कि विश्वास की प्रार्थना ने बीमार को बचा लिया है, और परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करेगा और वे फिर से चंगे हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसे प्रदान करें यीशु मसीह के नाम में। अब आप भाई लोग जो वहाँ से चले गए, आप सब बाकी के लोग आप प्रार्थना में रहें, जबकि हम सेवक गण उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं और हाथों को रखते हैं। स्वर्गीय पिता, आप जो वहाँ श्रोता गण में हैं, जो प्रार्थना पंक्ति में नहीं आ पाए, अब एक दूसरे पर अपने हाथों को रखें, अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस श्रोता गण को आपके पास ला रहे हैं, जैसे कि हम इस सेवकाई और इस अभियान को यीशु मसीह के झंडे के नीचे, जो महान अभिषिक्त परमेश्वर का महायाजक इमैनुएल है, वो खड़ा हुआ है, मुर्दों को जिलाया, जो सदा के लिए जीवित है, ताकि बिचवाई को करे। उसकी महान उपस्थिति अब हमारे साथ है, उसकी पवित्र सामर्थ हमारे ऊपर है कि हमें दर्शनों को दिखाए, भविष्यवाणी करे, बीमारों पर हाथों को रखे। परमेश्वर का अचूक वचन उसके पास कभी भी व्यर्थ नहीं लौट सकता। मैं बीमारी के हर शैतान को निकम्मा ठहराता हूँ, पाप की हर सामर्थ को, हर अविश्वास को, यीशु मसीह के नाम में। होने पाए ये लोगों में से तितर बितर हो जाए और होने पाए वे चंगे हो जाएं। प्रभु इन सेवक भाइयों को आशीषित करें, जैसे कि ये लोग एक हृदय और एक चित्त में एकत्र हुए हैं, और कलीसिया के सारे लोग हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस बड़े मिड टाउन ओहियो में इसके बाद अपनी बेदारी को भेजें प्रभु, जो एक ओर से दूसरी ओर फैल जाए और हड्डियां एक साथ जुड़ जाएं प्रभु, और खाल की नसें, और होने पाए परमेश्वर की सामर्थ एक शक्तिशाली एकजुट कलीसिया को यहाँ इस शहर में उठाकर खड़ा करे, जो कि फैल जाए, जो एक आदर्श कलीसिया हो इस सारे राष्ट्र में, जिससे कि लोग इस शहर में परमेश्वर की सामर्थ को देखने आ सकें। प्रभु इसे प्रदान करें, बीमारों और पीड़ितों को चंगा करें, खोए हुओं को बचाएं, और आप स्वयं के निमित्त महिमा को पाएं। इसे प्रदान करें कि ये सारे रुमाल और छोटे छोटे पार्सल जो यहाँ पर रखे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि पवित्र आत्मा हम पर और इस भवन में हमारा अभिषेक करे, होने पाए उनमें से हर एक जन चंगा हो जाए। बाइबल में ये लिखा है, जब इजराइल अपने कर्तव्य के मार्ग पर था, अपने मार्ग पर, ताकि प्रतिज्ञा के देश की ओर जाए, तो वो लाल सागर मार्ग में आ गया। और एक लेखक ने कहा, परमेश्वर ने उस अग्नि स्तंभ में से नीचे देखा और लाल सागर डर कर पीछे हट गया, और इजराइल प्रतिज्ञा के देश की ओर चला गया जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। और अब यह बाइबल में है, यह लिखा हुआ है, मैं उन सभी चीजों से ऊपर रखूंगा ताकि तुम स्वास्थ्य में फलो फूलो। और जब ये रुमाल लोगों के पास पहुँचे जहाँ की शैतान ने उनके सामने लाल सागर को रखा हुआ है, होने पाए कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू में से होते हुए नीचे देखे और हर बीमारी को निकम्मा ठहराए उनके लिए जो यहाँ पर नहीं आ सके, और होने पाए बीमारी चली जाए, और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर के अभिषेक से भयभीत हो जाए, और होने पाए लोग उस अच्छी प्रतिज्ञा के अच्छे स्वास्थ्य और शक्ति में से होते हुए पार चले जाएं। प्रभु इसे प्रदान करें, और हम इस सभी को आपको समर्पित करते हैं, आपके प्रेमी पुत्र के नाम में, हमारा बचाने वाला यीशु मसीह, आमीन। सभा के लोगों, उसके सामने जो हम सभी को जानता है, उसके सामने जिसने हमें उठाकर खड़ा किया कि इस संसार में उसके उत्तराधिकारी हों, उसकी कलीसिया में होने पाए परमेश्वर की बहुतायत की आशीषें आप सब पर हो, जब तक हम फिर से ना मिलें। हमारी अगली सभा ज्ञात है कि आराधनालय में होगी, रविवार की सुबह, ईस्टर रविवार की सुबह, तब मैं जा रहा हूँ, यहाँ से इलिनॉइस में जा रहा हूँ। आपको आशीष मिले, अपनी कलीसियाओं में उपस्थित रहें, इन अच्छी कलीसियाओं में उपस्थित रहें, अपने हृदयों को एक साथ बनाए रखें, परमेश्वर के वचन पर बने रहें, उसके लिए जिए, क्योंकि आपके सामने भयानक चीजें रखी हुई हैं, इसे याद रखें। जब तक हम नहीं मिलते हैं, आइए हम खड़े हों और गाएं। अब आदर पूर्वक किसी के साथ जो आपके पीछे आपके आगे बराबर में खड़ा है उससे हाथ मिलाएं। अब हर कोई अब अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं, अब बहुत जोर से हर कोई इसे गुंजाए। आइए अब हम हमारे सिर को झुकाएं। याद रखें, हम में से बहुत से फिर से कभी नहीं मिलेंगे, तब तक अब इसे गुनगुनाएं, आपका पास्टर भाई सुलिवन। जब तक हम ना मिलें मेरे भाई,